ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय।
गृहस्थ धर्म पार्ट 5 पांचवा भाग है गृहस्थ धर्म का। हमने जो कुछ कल देखा है बहुत महत्वपूर्ण विषय था, वो दो ही पॉइंट थे परंतु बड़े महत्वपूर्ण। कौन से पॉइंट थे? दो पॉइंट पे चर्चा की हमने। कृष्णा कॉन्शियसनेस गृहस्थ जीवन अर्थात 12 प्रिंसिपल फॉर सक्सेसफुल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। कृष्ण कॉन्शियस जीवन के, यशस्वी कृष्ण कॉन्शियस जीवन के 12 तत्व, 12 प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। तो उसमें वो 12 प्रिंसिपल्स में से, 12 प्रिंसिपल्स में से हमने दो प्रिंसिपल कल देखे हैं। पहला प्रिंसिपल कौन सा है?
अलाइन विद श्री प्रभुपाद।
अलाइन विद श्रील प्रभुपाद अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के साथ मेल जोल, तालमेल, श्रील प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस के साथ तालमेल। तो कैसे तालमेल था उसमें, क्या बताया गया था? चार, कौन सी नहीं वो तो पहले क्या क्रिटिसाइज,
उसके पहले नो शब्द लगा मैं, नो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, नो क्रिटिसिज्म, नोट्स नहीं लिखे, डायरी है प्रभु जी के पास। चार प्रिंसिपल, कंटेम्प्ट्स, कंटेम्प्ट्स अर्थात अनादर करना, क्रिटिसाइज करना अर्थात, क्रिटिसिज्म का क्या अर्थ होता है हिंदी में? आलोचना, आलोचना ही करते रहना। पहला पॉइंट नो आलोचना, दूसरा पॉइंट नो अनादर, एक दूसरे का अनादर नहीं करना चाहिए, पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का अनादर नहीं होना चाहिए, नो कंटेम्प्ट। तीसरा डिफेंसिवनेस अर्थात, अब डिफेंसिवनेस का सिंपल मीनिंग ये है, हाँ बोलिए, मान लो मैंने कुछ गलती की है, उदाहरण बोलता हूँ, समझो मैंने कुछ गलती की है और मेरे पत्नी ने वो गलती निकाली है, तो मैं मेरे पत्नी को क्या कहूंगा? ठीक है तुमने भी परसों के दिन वो गलती किया था, तुमने क्या कम गलती की है? चार दिन पहले तुमने ऐसा ऐसा किया था, अभी मैंने गलती की है, लेकिन मैं जवाब डिफेंस क्या कर रहा हूं? दूसरों की गलती निकाल के मेरे गलती का डिफेंस कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? गोलियां चलेगी, हमने बोला ना मशीन गन चलेगी, क्योंकि ट्रिगर खींच लिया है अभी मैंने ये बोल के कि चार दिन पहले तुमने भी यही किया था, ऐसा बोल के ट्रिगर खींच दिया। अभी क्या होगा? उधर से मैंने पांच दिन पहले क्या किया था, छह दिन पहले क्या किया था, सात दिन पहले क्या किया था, सात साल पहले क्या किया था, दस साल पहले मैंने क्या किया था, वो सारी बातें फायर होगी मेरे ऊपर। सो नेवर बी डिफेंसिव। यदि गलती करते हैं तो गलती का स्वीकार करना चाहिए। यस यस यस, आई एम सॉरी, गलती हो गई। ये मत बोलिए कि तुमने भी किया था, चार दिन पहले तुमने भी ऐसा किया था, नहीं वैसा किया था। सो डिफेंसिवनेस इज नो डिफेंसिवनेस। गलतियों को गिनाते मत बैठिए, जीवन पूरा हो जाएगा लेकिन गलतियां गिनना रुक नहीं जाएगा। इतनी गलतियां हम कर सकते हैं कि गिनना भी मुश्किल हो जाए, जीवन कम पड़ जाए गिनने के लिए, इतनी गलतियां हमारी ओर से हो सकती है। सो डोंट बी डिफेंसिव। जब मिस्टेक होती है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है सॉरी, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे नहीं करने की। डिफेंसिव फिर देखिए, क्रिटिसिज्म में चार बातें नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की हमने जो है चार बातें देखी है। सॉरी, पहला मुद्दा जो है, सॉरी, अलाइन विद श्रील प्रभुपाद में हमने चार बातें देखी है, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्ट, डिफेंसिवनेस और स्टोन वॉलिंग। प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यदि हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, आनंदमय जीवन यदि हम चाहते हैं, हैप्पी लाइफ, कृष्ण कॉन्शियस हैप्पी मैरिड लाइफ यदि चाहते हैं, तो उसमें के लिए हमको ये चार बातें अवॉइड करनी होगी। पहली बात है क्रिटिसिज्म, अर्थात आलोचना नहीं करना है। कंटेम्प्ट, अर्थात अनादर नहीं करना है, एक दूसरे का आदर करना है। तीसरी बात डिफेंस, अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, अपनी गलतियां की है इसका स्वीकार करना चाहिए। और चौथी बात स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग के अर्थात क्या? नो कम्युनिकेशन। मान लो पत्नी बोल रहे बोलती रहे, क्या फर्क पड़ता है, अपना काम शुरू है जाने दो, अपनी पत्नी बोल रही है, मैं, ये अपने सुन रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कोई एक व्यक्ति पति या पत्नी कुछ बोलते जा रहे और दूसरी व्यक्ति क्या है उसको अनसुना करके जाने दो। अपने आप को स्टोन वॉल, अपने चारों तरफ वॉल बना लेते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता है। दैट इज वेरी 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 डेंजरस। चारों में से उस बात को सबसे ज्यादा डेंजरस बताया था, है ना। सो ये पॉइंट बताया गया था कम्युनिकेशन के विषय में, जो महत्वपूर्ण बात हुई थी उसमें हमने स्टोन वॉलिंग के ऊपर कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है यह बात कहा था कि अपने आप को इस प्रकार से बांध के मत रखिए। कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है, कम्युनिकेशन होना बहुत 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 आवश्यक है। मनुष्य इसी के लिए जाना जाता है, इज वेल कम्युनिकेटर। मनुष्य अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है ना भाई, डायरेक्ट मिल के आके बातचीत कर सकता है, नहीं तो फोन पे कर सकता है ना। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हो सकता है, कितनी तो बातें कम्युनिकेशन हो सकता है। सो कम्युनिकेशन के दो मुद्दे बताए थे, दो पॉइंट जो कि हमने कहा था, ये अपने डायरी में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना कैसे और बोलना कैसे। कम्युनिकेशन में सुनना और बोलना, सुनो और बोलो, व्हाट एल्स है कि नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सुनो और बोलो। पति पत्नी में ये दो बातें तो होनी चाहिए, सुनो और बोलो। सुनना कैसे सुनना है? रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव अर्थात ध्यान लगा के, मनन करके, कोई कह रहा है तो एकदम पूरा फुल अटेंटिव, पूरा अटेंशन के साथ सुन रहे हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। मन लगा के सुनना, मन से सुनना और आदर से बोलना, रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, दो महत्व के मुद्दे आप याद कर लीजिए एकदम पक्के पक्के। रात को चार बजे भी दो बजे भी फोन किया तो प्रभु जी बताइए, तो प्रभु जी बोलेंगे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग। ये इतना अपने ब्लड में उतरना चाहिए, हम सबके ब्लड में ये उतरना चाहिए। क्या? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग, एकदम मन लगा के एक दूसरे को सुनना और आदर पूर्वक एक दूसरे से बात करना, आदर से, ऐसा नहीं कि निगलेक्ट करके अनजाने दो नहीं, ये सब ऐसा नहीं। सो ये बात हमने कल देखी थी। फिर दूसरा पॉइंट क्या देखा था, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, आध्यात्मिक प्रगति, है ना, आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, उसमें क्या क्या हमने समझा था, वो तो परसों के लेक्चर का है। ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैरिटी एंड मैच्योरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है। चैरिटी, एक दूसरे के लिए पहले देना लेना देना शुरू करना चाहिए, फिर दान धर्म करना चाहिए। पहले एक दूसरे के लिए लेन देन समझना चाहिए, किसी दूसरे के लिए मैं त्याग कर रहा हूं, पत्नी के लिए मैं त्याग कर रहा हूं, पति के लिए मैं त्याग कर रही हूं, कुछ वस्तुओं का, कुछ विषयों का मैं त्याग कर रहा हूं, चैरिटी दे कर रहे हैं। फिर मैच्योरिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, मैच्योरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Only good communication skill can promote a spiritual married life. यदि हम हमारे वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, spiritual बनाना चाहते हैं, तो केवल एक ही बात ऐसी है जिसके कारण वो हो सकता है, वो क्या है, communication, एक दूसरे से खुल के बात करना। अभी इन्हीं पॉइंट्स का ये आगे की जो 10 पॉइंट्स है वो ये दो पॉइंट का ही लगभग विस्तृत रूप है, उसी यही दो पॉइंट को अच्छे से समझाया गया है आगे के 10 पॉइंट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रिंसिपल 3, तीसरा तत्व जो है हैप्पी मैरिड लाइफ का, वो है स्पिरिचुअल इक्वालिटी एंड मटेरियल डिफरेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, संपूर्ण संसार में आजकल इस मुद्दे पे बड़ी वाद विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। स्त्री है, क्यों ऐसे बोला जाता है कि ये स्त्री है, इज अ फीमेल, स्त्री को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा चल रहा है ना, सब घर घर की कहानी है, घर घर में यही चल रहा है, जो बाहर संसार में चल रहा है, जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, वो इधर पारिवारिक इसमें भी चल रहा है, स्त्री को पूरा अधिकार चाहिए। इस विषय पे शास्त्र क्या कहते हैं, स्त्री और पुरुष एक है, दोनों को एक ही अधिकार होना चाहिए, इस विषय पे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं स्पिरिचुअल इक्वालिटी और मटेरियल डिफरेंस, अर्थात आध्यात्मिक स्तर पे हम सब एक हैं, परंतु भौतिक स्तर पे कोई भी दो लोग एक नहीं है, कोई भी, उन जुड़वा भाई भी होगे तो भी नहीं, जुड़वा बहने होगी तो भी नहीं। हाँ, भौतिक स्तर पे, बॉडीली लेवल पे, भौतिक स्तर पे कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं, दो स्त्रियां भी एक नहीं है, तो पुरुष और स्त्री एक कैसे हो सकते समान कैसे हो सकते, दो स्त्री समान नहीं है तो पुरुष और स्त्री समान कैसे हो सकते हैं। मटेरियल स्तर पे, भौतिक स्तर पे, देयर इज नो इक्वालिटी, देयर इज अ डिफरेंस, परंतु आध्यात्मिक स्तर पे सेम, हम सब के सब भगवान के अंश है, हम सब भगवान के अंश है, और इसीलिए हम सब भगवान के भक्त हैं मूलतः। तो हमने कल एक आदि पुराण से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसकी भी चर्चा की थी, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नहीं है तो पत्नी तो भक्त है, पत्नी तो भगवान की भक्त है कि नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे हम सब एक है, हम सब भगवान का अंश है, उसके अनुसार हम भगवान के भक्त है। सो पत्नी भगवान की भक्त है, तो भगवान कह रहे आदि पुराण में कि जो मेरे भक्तों का भक्त होता है वास्तव में वो मेरा भक्त है, तो हमको भक्त की सेवा करनी होगी। सो अर्थात पत्नी की सेवा पति को करनी होगी, पति की सेवा पत्नी को करनी होगी, बरोबर नहीं, ये चर्चा हुई थी। परंतु उसके आगे भी हमारे समाज में कितनी गलतियां है, कितना एक्सप्लॉयटेशन का एटीट्यूड है, कितना अत्याचार पूर्ण एटीट्यूड है हमारे समाज में, हम देख रहे हैं कि यदि हम पुरातन से पुरातन समय में भी जाते हैं ना, तो आप भगवान राम सीता या भगवान श्री कृष्ण और उनकी अष्ट रानियों का विचार कीजिए। हम कहते हैं अरे पुराने समय में तो ऐसे ही चलते आ रहा है, पुराने समय से तो यही चलते आ रहा है कि स्त्री तो क्या होती है, स्त्री को तो सब सुनना ही पड़ेगा भाई बस, ये तो हमारे परदादा दादा वो सब करते आ रहे। परंतु आप भगवान राम का देखिए, भगवान कृष्ण का देखिए, जनक महाराज का देखिए, दशरथ महाराज का देखिए, दशरथ महाराज की जगह यदि आप होते हम होते तो कैकेयी ने जो वरदान मांगा था आप और हम होते तो क्या बोलते, काय का वरदान, चलो भागो। पर देखिए दशरथ महाराज ने क्या किया। सो ये हमारा अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे दादा परदादा तो ऐसे ही करते थे, स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन या सब काम सब जो है वो स्त्री को ही करना होगा, स्त्री अर्थात सबसे पतित, स्त्री अर्थात नौकरानी, स्त्री अर्थात ये, स्त्री अर्थात वो, ये हमारा जो पुरातन ख्याल है वास्तव में शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र इसके लिए मना ही करते हैं। शास्त्र में एक बात का जहां तहां बहुत विस्तृत वर्णन है, वो है दया भाव, जीव दया, जीव दया। और वो अपने घर से शुरुआत करनी होती है, अपने पारिवारिक जीवन से शुरुआत करनी होती है, पति पत्नी की लाइफस्टाइल से शुरुआत करनी होती है। सो इसकी चर्चा हमने की है। सो फीमेल, एक बार एक माताजी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी को पूछा व्हाई दे आर ट्रीटिंग मी एज ए फीमेल, वो लोग मुझे क्यों एक फीमेल की तरफ, फीमेल तो थी बट वाई दे आर डिफरेंशिएटिंग, वो क्यों ऐसा भेद कर रहे हैं कि मैं स्त्री हूं मैं स्त्री हूं, वो लोग वे लोग ऐसा क्यों भेद कर रहे हैं प्रभुपाद जी बताइए, वाई दे आर डूइंग दिस। प्रभुपाद जी ने तुरंत उस प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछा। प्रभुपाद जी ने प्रश्न के ऊपर क्या प्रश्न पूछा, आर यू बॉडी, आर यू बॉडी, शी सेड नो, देन दैट्स ऑल फिनिश, you are not body, whatever they are treating, forget it. कई बार कलर के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज में
कलर के ऊपर बहुत है, रंग भेद,
रंग भेद पाश्चिमात्य देशों में बहुत होता है। तो ऐसे ही रंग भेद के ऊपर प्रभुपाद जी को किसी ने कुछ लिखा था, तो प्रभुपाद जी ने उनको लिखा, प्रभुपाद जी कहते हैं वो माता जी को, if someone mistreat you because of your skin color, यदि कोई आपके रंग के अनुसार आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो दैट इज देयर इग्नोरेंस, तो समझना चाहिए कि वे लोग एकदम अज्ञानी हैं। वो उनका क्या है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अर्थात अज्ञान, दैट इज देयर इग्नोरेंस, वे लोग अज्ञानी है समझना चाहिए। फिर आगे क्या कहते प्रभुपाद देखिए, एंड इफ यू एक्सेप्ट दैट, मतलब किसी ने कुछ भला बुरा कहा, तुम स्त्री हो तुम काली हो तुम गोरी हो, इस टाइप से रंग के ऊपर कुछ बोला, तो प्रभुपाद जी कहते वो तो अज्ञानी है, उसको अज्ञानी समझ के छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि आपने उसको नहीं छोड़ा और उसने जो कहा उसको आपने मान लिया, तो प्रभुपाद जी कहते देन दैट इज योर इग्नोरेंस, वो तुम्हारा अज्ञान है। समझ गए, बोलने वाला तो अज्ञानी है लेकिन बोलने वाला जो बोला है उसका यदि तुमने स्वीकार किया तो तुम अज्ञानी हो गए हो, राइट। बोलने वाला तो अज्ञानी है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है, परंतु तुम उसको स्वीकार कर रहे हो, तुम हर्ट हो गए हो, तुमको दुख हो रहा है, तुम इरिटेट हो रहे हो, आवेग आ गया है, इट मीन्स तुम भी अज्ञानी हो। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उसका वर्णन देते हैं। सो हम कहने का अर्थ तो यही है कि आध्यात्मिक स्तर पर हम एक हैं, भौतिक स्तर पे हम भिन्न है। भेदाभेद तत्व, भेदाभेद तत्व क्या है, भेदा भेद अर्थात इसका अर्थ क्या है, एक भी है और भेद भी है, अभेद और भेद, अभेद भी है तो भेद नहीं भी है और भेद भी है, अचिंत्य बात है एकदम, भेद अभेद, भेद है भी और भेद नहीं भी है। जैसे मटके में पानी भरते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने माता जी को ये उदाहरण देते हैं, और माताजी भी उसके ऊपर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं चैतन्य महाप्रभु को। बाल निमाई मटके में पानी भरते हैं, क्यों भरते हैं? क्योंकि पानी ठंडा होता है, ठीक है। मटका किस चीज का बनता है? मट्टी का बनता है। तो मट्टी में हमने पानी डाल दिया तो ठंडा होगा पानी मटका बनाने के बदले? अरे मटका मट्टी का ही तो बना हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? मटके में और मट्टी में क्या फर्क है? मट्टी का ही तो बना हुआ है, क्या फर्क है? हाँ, उसको आकार, लेकिन परंतु वो भेद है, आकार में भेद है, रूप में भेद है, गुण एक ही है। सो गुणात्मक दृष्टि हम एक ही है, रूपात्मक दृष्टि हम भिन्न है, है ना? एक ही मटेरियल से सब बने हैं, अर्थात एक ही जीव है, जीवात्मा है, वो एक ही है, परंतु आकार रूप भौतिकता उसके स्तर पे हम बहुत भिन्न है। इस बात को हमने समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है। इसके पहले हमने इसकी चर्चा की है कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, इसकी चर्चा हुई है ना? हुई है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक परिवार में, एक परिवार जैसे होता है ना, समझना चाहिए। एक परिवार मीन्स एक मिनी गवर्नमेंट, सरकार चलाते हैं ना, देखते हैं ना सरकार चल रही है। सो फैमिली मीन्स एक मिनी गवर्नमेंट, एक सरकार है, फैमिली सरकार, परिवार की सरकार, मिनी गवर्नमेंट, राइट? और ये मिनी गवर्नमेंट में प्रत्येक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी होती कि नहीं होती? होती है ना। ऐसे प्रत्येक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई है, प्रत्येक एलिमेंट्स को, प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात पति को भी कुछ जिम्मेदारी है, पत्नी को भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक सरकार चला रहे हैं, घर की सरकार नहीं, पारिवारिक सरकार चला रहे हैं। इसलिए दोनों के पास कोई ना कोई जिम्मेदारी निश्चित है। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य ने एक दूसरे को इस जिम्मेदारी निभाते वक्त सपोर्ट करना चाहिए। करते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? ऐसे ये गवर्नमेंट में प्रत्येक मेंबर ने दूसरे मेंबर को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए पता है? लोग क्या करते हैं सपोर्ट के बदले, क्या होता है बताए आपको? सपोर्ट करना चाहिए। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक मेंबर ने दूसरे मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चलेगी। सारे मिनिस्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया काम करेगी, राइट? परंतु यदि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चल पाएगी? मिनिस्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चल पाएगी? ऐसे ही फैमिली का जो गवर्नमेंट है वो फैमिली गवर्नमेंट में एवरीबडी इज मिनिस्टर, और यदि वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फैमिली गवर्नमेंट कोलैप्स, गिर जाएगी, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिस प्रकार से नदी बहती है ना, बहुत स्मूथली बहती है, पर नदी जब बहती है तो कभी कभी क्या होता है, बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, पत्थर आ जाता है, रॉक, परंतु नदी का फोर्स रहता है। वो नदी का फोर्स रहने से और कंसिस्टेंसी रहने से, रुक रुक के नहीं बहती है नदी। नदी ये नहीं सोचती कि थोड़ा, अरे अभी तक बहुत अच्छा सब चल रही थी, चारों तरफ समृद्धि हो गई है मेरी तरफ से, अभी थोड़ी देर इस जगह पे रुक जाती हूँ, बस हो गया। ऐसा नहीं, नदी चलती रहती है, कंसिस्टेंटली चलती है, चलती है क्योंकि उसके पास कंसिस्टेंसी है। इसलिए बीच में ऑब्स्टेकल भी आता है तो उसको वो क्या करती है, और पावर, उसको क्रॉस ओवर कर लेती है, उसको क्रॉस करके फिर बहना शुरू करती है। ये जो प्रिंसिपल्स है, ये मैरिड लाइफ का एक फ्लो है, वैवाहिक जीवन का एक ये प्रवाह है, जीवन प्रवाह कहते हैं ना, जीवन प्रवाह। ये जीवन प्रवाह का जो फोर्स है वो क्या है, वो फोर्स है पति पत्नी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी। पति पत्नी का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन है वो इस प्रवाह का फोर्स है, शक्ति है। ये शक्ति के कारण ये जीवन का प्रवाह बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है और आसपास सभी को हरित कर रहा है, हरा भरा कर रहा है। आसपास अर्थात हमारे परिवार में सबको क्या कर रहा है, सुखी समृद्ध कर रहा है, आनंद प्रदान कर रहा है, क्योंकि फ्लो है और फोर्स भी है। जीवन का प्रवाह है और उसमें फोर्स भी है। कौन सा फोर्स है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। तो ऐसा प्रवाह जब बहता है और इसके बीच में कभी 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 एक हाथ बार बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाता है, एकदम कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है वैवाहिक जीवन में, कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु वो डिफिकल्टीज, वो समस्या, वो पहाड़, क्योंकि ये प्रवाह कंसिस्टेंट है तो धीरे 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 वो पहाड़ क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है, कम होते जाता है और एक दिन क्या होता है, ये प्रवाह उस पहाड़ को भेद कर अपना मार्ग क्रमण करते रहता है। इस प्रकार से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी जो एकता है ना, एक दूसरे के साथ रहना अर्थात एकता, स्पिरिचुअल इक्वालिटी, इक्वालिटी है, वो एक फोर्स है। मटेरियली भला ही हम अलग अलग है, एक का विचार कुछ है, दूसरे का विचार कुछ है, एक का लाइकिंग कुछ है, दूसरे का लाइकिंग कुछ है, है ना, मतभेद है, वो मटेरियल स्तर पे है। स्पिरिचुअल इक्वालिटी, मटेरियल डिफरेंस। सो वेदावेदी शब्द को भगवान ने जिस प्रकार से समझाया है वो तत्व हमारे इस पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी अप्लाई होता है, है ना। हम एक है और भिन्न भी है, इसलिए हमको कभी कभी जो अच्छा लगता है हो सकता है हमारे पार्टनर को अच्छा न भी लगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इरिटेट हो जाए, यहीं पे हमको वेदावेद तत्व समझना है। हम सब एक है फिर भी हम अलग है, एकता और भिन्नता, स्पिरिचुअल इक्वालिटी, मटेरियल डिफरेंस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम इसके लिए एक बात भी हम समझते हैं कि मटेरियल डिफरेंस क्या है। ये मटेरियल डिफरेंस को बहुत अच्छा प्लान यदि हम कर लेते हैं, स्पिरिचुअल इक्वालिटी तो हमको पता है कि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब ने जप करना चाहिए, हम सब ने भगवान के नाम का नित्य स्मरण करना चाहिए, हमने भक्त रहना, भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने की तीनों बात, तीन ही बातें हैं जो बार बार हम कहते हैं, कौन सी तीन बातें? कोई भक्त है कैसे, जीव दया और नाम रुचि वैष्णव से, तीन बातें बस। बहुत संपूर्ण शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और सारे ग्रंथ जितने भी है, वो सारे का संपूर्ण शास्त्र ये तीन शब्दों में समाविष्ट है। सारा शास्त्र ये तीन शब्दों में समाविष्ट है, जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। यदि इस प्रकार से हम भक्त बनना चाहते हैं, तीनों बातों को आत्मसात करना चाहते हैं, उस इक्वालिटी को समझकर हम वो डिफरेंस को भी समझे, हमारे अंदर जो समानता है उसको समझते हुए हम वो डिफरेंस भेद है उसको भी यदि समझे तो हमारा जीवन बहुत ही हैप्पी हो जाएगा, मैरिड लाइफ विल बिकम वेरी हैप्पी। इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ प्लान है जो हमने करना चाहिए, पति पत्नी ने मिलके वो प्लान करना चाहिए। प्लान क्या है? प्लान ये कि मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रत्येक व्यक्ति को है, पति की भी कुछ भौतिक जिम्मेदारियां है और पत्नी की भी कुछ भौतिक जिम्मेदारियां है, दोनों की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां है। यदि हम इन जिम्मेदारियों को शेयर करते हैं, जिम्मेदारियों को हम शेयर करते हैं, भौतिक जिम्मेदारियों को, तो हमारा जीवन और सुकर हो जाएगा। एक तीन कॉलम करना चाहिए, एक कॉलम में लिखना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरे कॉलम में लिखना चाहिए हस्बैंड, तीसरे कॉलम में लिखना चाहिए वाइफ और एक कॉलम बनाना चाहिए बोथ। चार कॉलम करना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड इकोनॉमिकल रिसोर्सेस फॉर हाउस होल्ड, अर्थात गृहस्थी के लिए अर्थार्जन, गृहस्थी चलाने के लिए धन किसकी जिम्मेदारी है, आप डिसाइड कीजिए। शास्त्र ने आपको फुल फ्रीडम दिया है इसमें डिसाइड करने में, किसकी जिम्मेदारी है वो डिफाइन कर लीजिए। हस्बैंड की भी है, कभी वाइफ की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड नहीं करे, वाइफ की भी हो सकती है, कभी कभी दोनों, बोथ, दे बोथ आर शेयरिंग देयर इकोनॉमिकल रिसोर्सेस, कुछ भी दे कैन शेयर। इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मान लो वाइफ के पास 4-5 हजार के है और हस्बैंड के पास 5-10-50 हजार के है, तो भी वी कैन कॉल इट अ शेयरिंग बोथ। सो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको हम डिफाइन करें, एक चार्ट बना के अपने घर में लगा दे या अपने बेडरूम में रख दे, रोज उसको रिवाइज करे कि ये है ऐसे है। तो इससे होगा क्या, इससे डिफरेंस जो हमारे बीच में है, मटेरियल डिफरेंस, ये मटेरियल डिफरेंस के कारण हमारे बीच में जो वाद विवाद होते हैं ना, वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। परंतु इस चार्ट का दुरुपयोग न करें, नीचे स्टार करके कंडीशन लिखा है, प्लीज डोंट मिस यूज इट फॉर अदर्स। आई मीन दूसरों के विषय में कमेंट पास करने के लिए नहीं है। जैसा मान लो पत्नी आज दिन में, अच्छा ऐसा किया आज, आज मैं चार्ट में देखती हूँ पूरा, हाँ पकड़े गए, इसमें ये लिखा है, देखो ये आप करने वाले थे, आपने नहीं किया, यू आर रॉन्ग, इसके लिए चार्ट नहीं है। चार्ट एक दूसरे को समझने के लिए है, एक दूसरे की जिम्मेदारी समझने के लिए है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगभग वो है। फिर दूसरा है कुक फॉर होम, कुक फॉर फैमिली, अर्थात हमारे आचार्य के और शास्त्र के और गुरु के इंस्ट्रक्शन से हमको जो सिखाया गया वो है कि कुक फॉर लॉर्ड, भगवान के लिए कुकिंग करना। क्योंकि भगवान के लिए जब हम कुक करते हैं तो उसमें सबके लिए कुकिंग हो जाता है, क्योंकि भगवान सबके, घर में जितने मेंबर हैं उन सबके तो भगवान है ही ना। सो मटेरियल स्तर पर हम ये बोल सकते हैं कि कुक फॉर कुक फॉर फैमिली, कुकिंग कर रहे हैं ना, तो फैमिली का विचार करके, पति पत्नी बच्चे सास बहू ससुर जी सबका विचार करके, या आजकल हमारी एकदम डिसेंट्रलाइज फैमिली सब अलग 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 है, तो बेसिक हम चर्चा क्योंकि पति और पत्नी की कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे चर्चा उन दोनों की करेंगे। कुकिंग करते वक्त तो माता जी ने थोड़ा प्रभु जी के लाइकिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लो प्रभु जी को कोई चीज आती है अच्छी, वो कुक करते तो उन्होंने, उनको चीज बहुत अच्छी आती है इसलिए वो कुकिंग कर रहे हैं, इट हैज नो सेंस बेसिकली। वाइफ को क्या अच्छा लगता है वो कुकिंग करे, इट हैज सम सेंस, है। जैसे वाइफ हमेशा पति को अच्छा लगता है वो करने का, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही ले लिया वाइफ ने, पति ये टू बी अंडरस्टूड कि पत्नी को वही बनाना है जो मुझे अच्छा लगे, नहीं कि नहीं। परंतु पति ने भी कभी ये सोचना चाहिए कि पत्नी को कुछ अच्छा लगता है वो भी या खाए या बनाए या उनको खिलाए। सो बेसिकली द पॉइंट इज कुक फॉर फैमिली, सेंस ये होना चाहिए कि एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए खाने के विषय में, कुकिंग के विषय में। सो कुक फॉर फैमिली, डिसाइड कीजिए कि किसकी जिम्मेदारी है, हस्बैंड वाइफ या बोथ, उसमें टिक करते जाइए। प्रभु जी और माता जी जो चार्ट अपना अपना बनाइए और क्लास के बाद आप अपना एक दूसरे से चार्ट मैच कीजिए कि क्या क्या आपने किया, बाद में आपस में एडजस्ट करके उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का रक्षण करना, पति ने पत्नी का रक्षण करना, पत्नी ने पति का रक्षण करना, दोनों एक दूसरे का रक्षण करते हैं। ये भी मन में कभी बात होती कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट तो पति का ही है, पत्नी का रक्षण करना पति का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे नहीं है। पत्नी भी पति का रक्षण करती है। श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी महाराज एक तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं कि पत्नी पति का रक्षण करती है, कौन से स्तर पे कब रक्षण करती है, वहां कहा गया कि पत्नी एक किले की किलेदार है। रूपाल जी कहते हैं वो क्या है, किलेदार होती, किलेदार समझते हैं ना, किला है, किले का किलेदार अर्थात कमांडर है ना, किलेदार, वो पूरा रक्षण करती है उस किले का, उसको गिरने नहीं देती है। जरा भी यहां वहां डाइवर्जन होता है पति का तो पत्नी क्या करती है, पति को यहां वहां भटकने नहीं देती है, पत्नी इतनी पावरफुल प्रोटेक्टर है कि जब पति का सेंसेस इंद्रिया यहां वहां कभी डाइवर्ट हो जाती है, भागती है, तो पत्नी अपने उस शक्ति से, अपने उस प्रेम से, अपने उस भाव से पति को फिर से बचा लेती है उस डाइवर्जन से, उस क्या कहते हैं, गलत रास्ते पे जाने से या कोई दूसरे दूसरे प्रकार के प्रलोभन या आकर्षण से पत्नी पति को बचाती है। ये पावर पत्नी की है, इसलिए पत्नी भी क्या है, प्रोटेक्टर है, शी इज ऑल्सो प्रोटेक्टर। सो दोनों एक दूसरे की, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी दोनों की, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे, पति भी पत्नी को प्रोटेक्ट करे और पत्नी ने भी पति को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लीनिंग द हाउस, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहुत से हम सब के लगभग घर में क्लीन हाउस करने के लिए कोई सर्वेंट आते हैं, वो हाउस क्लीन करके जाते हैं। परंतु क्लीनिंग हाउस का मतलब है, मान लो पति ऑफिस में से आए और अचानक उन्होंने अपने कपड़े की अलमारी खोली, धाप जैसे सब गिर जाता है ऊपर। जब गिर जाता है तो पति क्या करते हैं, क्या बोलते हैं ऑफिस में से, ऑलरेडी अनबन होके आई है, कुछ गड़बड़ होके आई है, कुछ फ्रस्ट्रेशन बढ़ के आया है और यहाँ पे देख रहे हैं सब ऐसा पड़ा हुआ है, वो ऐसा पड़ा हुआ, शुरू हो जाते हैं ना, कुछ कुछ लेवल भी चेंज हो जाती है फिर कभी कभी, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो पत्नी ने भी इस भाव से समझना चाहिए कि ऑफिस से आए हैं, थके हारे हैं, कुछ ऑफिस में गड़बड़ हो गई है, ये सब इसलिए चल रहा है। और पति ने भी ये भाव समझना चाहिए कि ये आजकल काम इतने बढ़ गए हैं घर में, बहुत समस्या है, हो सकता है नहीं हो पाया हो, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति हो ऑल द टाइम फुल टाइम काम करते ही रहे और सब बिल्कुल अप टू डेट रखता ही रहे। कभी ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ सब मेस होती पड़ी रहती है घर में। तो पत्नी के ऊपर के जो शारीरिक मर्यादाएं हैं उसको पति ने समझना चाहिए, और पत्नी ने पति के पास जो मानसिक असंतुलन है, मेंटल इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू सम रीजन, ऑफिशियल में भी या प्रोफेशनल, उसके कारण थोड़ी चिड़चिड़ हो रही है, लेकिन वो चाहते वो भी अच्छा ही है, वो इस अच्छाई के लिए ही बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, खराबी के लिए तो नहीं बोल रहे। तो इस बात को यदि इस ढंग से ले तो समस्या वही हल हो जाएगी। परंतु फिर भी ये पॉइंट बनता है, ये जिम्मेदारी किसकी है, क्लीनलीनेस की, वो डिसाइड कीजिए, पति पत्नी या बोथ, हमने इसीलिए तीसरा कॉलम लिखा है बोथ बोथ में भी एक व्यक्ति 70% जिम्मेदारी लेता है, दूसरा व्यक्ति 30% लेता है, चलेगा, बट इट इज बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये पॉइंट ऐसे लगेगा एकदम क्षुल्लक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कभी कभी हैवोक क्रिएट करते हैं मैरिड लाइफ में। आप समझिए एक आध दिन ऐसा झगड़ा हुआ होगा हमारे घर में कभी, कि उसका कारण होगा कि कपड़ा नहीं दिख रहा है, कहाँ रखा है हुआ होगा, और फ्रिक्वेंटली होता है, कभी कभी तो फ्रिक्वेंटली होता है। परंतु ये यदि जिम्मेदारी में शेयर कर ले कि ये हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो ये घटना टल सकती है, नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नहीं लिख रहे मैं उनको अच्छे से पूछूंगा एकदम, दिस क्लास इज फॉर प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल के लिए क्लास है ना प्रभु जी, सुनने के लिए नहीं है, केवल नहीं सुनाने के लिए, ये एप्लीकेशन के लिए है। क्योंकि मैंने भी लिखा है प्रभु जी, मुझे भी बहुत मेहनत करके लिखा है एक पॉइंट, सोच समझ के क्या समस्या आती है वो कर करके, और फिर क्या फॉलो हो सकता है क्या फॉलो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है वो मैंने लिखा ही नहीं। जो मैरिड लाइफ में एकदम आदर्शवादी विचार है हम नहीं कर सकते, उसको मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है। इसलिए आप में से कोई भी ये नहीं बोले कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है प्रभु जी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों को शिक्षा देना, संस्कार देना, किसकी जिम्मेदारी है, बड़ा हॉट सब्जेक्ट है ये भी। तुमको नहीं सिखाते आता, मुझे बोल रहे हो बार बार सुबह, जरा करके देखो, पढ़ा के देखो, बच्चों को सुधार के देखो तो पता चलेगा, बच्चों को बड़ा करके देखो तो समझ में आएगा। ऐसे सेंटेंस बहुत कॉमन है घर में। इसकी जिम्मेदारी है बच्चों को सुसंस्कृत करना, संस्कार देना। कई बार माता जी बोलती है, मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, दिन भर इस किचन में पड़ी रहती हूँ, मैं कहाँ से सिखाऊ। प्रभु जी बोलते हैं, मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, मैं कहाँ से सिखाऊ। दोनों के पास टाइम कहाँ है प्रभु जी। फिर तीसरा और एक मुद्दा आता है, बच्चे कहाँ सुनते हैं, कुछ सिखाओ तो बच्चे कहाँ सुनते हैं, ये तीसरा मुद्दा है। सो यू हैव टू डिसाइड इट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। ये बचपन से, बहुत पहले से इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। तब जाके बच्चों को सुनने की आदत होती है। बच्चे नहीं सुनते क्योंकि बच्चों ने हमको कैसा देखा है, हमेशा एक दूसरे को नहीं सुनते हुए देख रहा। बच्चों ने देखा कि मेरे पापा तो मेरे मम्मी का कभी सुनते नहीं, मेरी मम्मी भी बहुत बार पापा का सुनती नहीं है, मैं काहे के लिए दोनों का सुनूं। ये बोलता नहीं है वो, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वही बिहेव आ जाती है, बिहेवियर आ जाती है, वही गुण आ जाते, वही संस्कार हो जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात, बच्चे लर्न्स बाय योर एक्टिविटी नॉट बाय योर वर्ड्स। वो आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होते, बच्चे बहुत होशियार होते हैं कि आपके किसी भी तामझाम में फंसने वाले नहीं है बच्चे। आप उनको भाषण नहीं दे सकते बच्चों को, बच्चे क्या सीखते हैं जो आप कर रहे हो वो सीखते हैं, दैट्स इट। भाषणबाजी नहीं समझते वो कुछ। और फिर पे द बिल्स, कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, कितने काम, फलाने बिल रह गया, ढिकना बिल, गैस का बिल रह गया, मोबाइल का बिल रह गया, इलेक्ट्रिक बिल रह गया, इंश्योरेंस का आप ध्यान भूल गए, ये हो गया, हर टाइम 100-100 रुपये ज़्यादा जाता है फाइन। डेट निकल जाती है, फिर याद आता है और फिर चिड़चिड़ होती है, किसके ऊपर, या तो खुद के ऊपर या पत्नी के ऊपर। होता है ऐसे, बिल्कुल होता है। Whose responsibility it is? कौन बिल भरेगा, डिसाइड कीजिए। मैं इसमें आपको पूछ नहीं रहा हूं, यह आपको डिसाइड करना है, परंतु कीजिए डिसाइड। माई पॉइंट इज दिस कि आप कीजिए, कुछ तो कीजिए उसमें। यह अवॉइड होगा आपके जो क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये बिल, दुनिया भर के बिल्स है आजकल, हजारों बिल्स है। मनुष्य का जो स्मृति है वो मर्यादित है, इतना क्या क्या याद रखेगा, भूल जाता है व्यक्ति। सो डिसाइड कि ये कौन करेगा। फिर कभी कभार अचानक ऐसे लगता है, अरे ये महीने में इतना पैसा खर्चा कैसे हुआ था, ये 50-60 हज़ार रुपया ये था, 10-20 हज़ार रुपया वो था, ये था, पैसा कहाँ गया। फिर चिड़चिड़, फिर तुमने खर्चे पे ध्यान नहीं रखा, बोले तुमने खर्चा किया, बोले तुम वहां गए थे, बोले तुमने ये लिया था, शुरू ब्ला 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 ब्ला। सो इनकम एंड एक्सपेंस, इसका बैलेंस चेक कौन करेगा। लिखिए वो पॉइंट को कि कितना आया है पैसा घर में और कितना खर्चा हो गया है। मैं केवल परिवार की बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को बिजनेस में ऑफिस में रखिए, बट फैमिली लाइफ के बारे में, घर में जो चर्चा हो रही, घर की चर्चा, पारिवारिक जीवन की, क्योंकि इससे भी पति और पत्नी के बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। हाँ, कि खर्चे हो जाते हैं, मेमोरी तो शॉर्ट है, पता ही नहीं 20 हज़ार रुपया कहाँ गया, कहाँ गया, कैसे खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, क्योंकि जब जरूरत होती है तब यदि कैश अवेलेबल नहीं है तब तो बहुत अखरता है, तब हमको लगता है कि पत्नी ने जबरदस्ती खर्चा किया, तब पत्नी को ऐसे लगता है कि ये जबरदस्ती के पैसे इधर उधर उड़ाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं, ये सब होता है। सो इसलिए क्या करना चाहिए, ये काम किसी एक ने करना चाहिए। क्या काम, अपना बैलेंस चेक रखना चाहिए, बैलेंस के ऊपर चेक रखना चाहिए, पारिवारिक जीवन के लिए रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ को पारिवारिक लाइफ में मिक्स मत कीजिएगा, वो इट्स वेरी डेंजरस। कभी कभी ये भी समस्या होती है कि बच्चों को स्कूल में पहुंचाना या बस तक पहुंचाना कौन करेगा। बच्चों को स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं उसमें कौन ले जाएगा, किसकी जिम्मेदारी है। स्कूल में अभी रिसेंटली स्कूल में कुछ इवेंट हुआ था, उन्होंने हमको इनवाइट किया, कुछ 25-30 पेरेंट्स को इनवाइट किया था, उसमें हमारा नाम था, हम गए थे। उन्होंने हमको ये प्रश्न पूछा था, आप क्या समझते हैं कि स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं वो ऐसे ही फालतू में होते हैं। कई बार प्रभु जी लोग वाइफ को बोलते, जाओ तुम जाओ देख लो क्या चल रहा है, जाओ। वो सोचते हैं कि ये क्या है, टाइम पास का काम है, सब बेकार काम है। तो उन्होंने हमको ये प्रश्न पूछा था। तो हमने वहां पे कहा था कि नहीं, ये तो दोनों की जिम्मेदारी और दोनों ने इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए इसके लिए, और उतना सीरियस रहना चाहिए स्कूल इवेंट्स के प्रति, क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। कभी बच्चा यदि ये देखे कि उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स आ रहे हैं एवरी इवेंट्स और मेरे तो पापा को टाइम ही नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है। इसलिए ये बात ध्यान रहे कि दोनों जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी डिफाइन कर ले। दोनों ने ऑल्टरनेट जाना चाहिए, जाना दोनों ने चाहिए, एक बार ये एक बार वो, या जैसे भी दोनों साथ में जाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है। सो इनवाइट गेस्ट अर्थात भक्त वैष्णवों को घर पे इनवाइट करना, इट्स वेरी बिग क्वेश्चन। जब भी प्रभु जी को ऐसे लगता है कि वैष्णव भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको प्रसाद के लिए इन्वाइट करना चाहिए, तभी तभी वो प्रभु जी ने, पति ने पत्नी के साथ पहले डिस्कस करना चाहिए, पत्नी को कंसिडर नहीं करना चाहिए किसी को भी प्रसाद पे बुलाने के पहले। पत्नी का सैंक्शन होना अनिवार्य है, शी शुड सैंक्शन इस, यस। हम सब भक्त हैं, मैं क्या फॉलो करता हूं आपको बताता हूं, अभी मैं मेरा अपना सीक्रेट बताता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। बहुत लोग प्रसाद के लिए घर पे बुलाते, प्रभु जी आइए प्रसाद के लिए, प्रसाद, लेकिन जब तक माता जी नहीं बोलती मैं जाता ही नहीं प्रसाद के लिए क्योंकि प्रभु जी के लिए तो चुटकी का खेल है, आओ प्रसाद के लिए आओ, करना किसको पड़ता है, प्रभु जी तो कुछ करने वाले है नहीं, करना किसको पड़ता है, माता जी को करना होता है। मतलब ऐसे ही हम ये ध्यान में रखें कि किसी को प्रसाद के लिए इन्वाइट करना है तो एक्सक्लूसिव राइट इज माता जी, माता जी के पास उसका पूरा अधिकार है। और हम माता जी से, वाइफ से कंसल्ट करें, पूछे कैसा कर सकते हैं, किसी को इनवाइट करना है प्रसाद के लिए कैसे, क्या कर सकते हैं, कैसा कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे को, नहीं? किसी को भी कंसिडर नहीं करना चाहिए पति पत्नी के रिलेशनशिप में। एक बात बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि कंसिडर नहीं करना है किसी को भी, वो तो कर लेंगे, वो तो कहा कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी बैड। क्योंकि एक समय जब ऐसा बार बार होगा ना, तो पत्नी नेक्स्ट टाइम आप किसी को लेके जाएंगे प्रसाद के लिए और पत्नी प्रसाद ही नहीं बनेगी, बनाएगी बैठे रहेंगे वेट करते, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, वो सिचुएशन को नहीं आने दे, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो कंसल्ट करें एक दूसरे को, कंसिडर ना करें। कल्चरल एक्टिविटीज, यदि फैमिली के लिए कुछ आप कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, परिवार के लिए बोलो, या हमारे भाई सिस्टर मदर पूरे हमारे जो क्लोज एंड नियर एंड डियर्स है वो पूरे परिवार के लिए कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हो, तो इसमें जिम्मेदारी शेयर पहले करो कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। हाँ, कई बार हम लोग करते हैं, चलो मेरे चाचा है, मेरा भाई है, मेरी मौसी है, मेरा ये है, उनके यहाँ पे कीर्तन करते हैं, चलो चलो। तो आप दोनों पहले क्या करोगे उसके लिए ये डिसाइड करो, दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिसाइड करो। और वो कार्यक्रम में के लिए मदद करने का प्रयास करो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक्ट एज अ फैमिली हेड, ये तो कोई एक ही हो सकता है, ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है। ये हेड जो होता है सर, कितने हमको, एक है कि दो है, वो एक है और बाकी सभी जितने भी इंद्रिया है, कितने सारे इंद्रिया है, सभी को वो एक ठीक ठीक से स्ट्रीमलाइन करता है। देयर शुड बी वन हेड ऑलवेज, इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, उसमें क्या किया उन्होंने, वन प्रेसिडेंट, कभी कभी तीन चार प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो मंदिर में या कंपनी में या घर में क्या होता है, मेस हो जाता है, तेरा मेरा द्वंद्व शुरू हो जाता है। डिसाइड हु इज द हेड, कौन हेड होना चाहिए परिवार का, वो डिसाइड करने के बाद बार बार अधिकार के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक बार हेड हो गया ना कोई, तो फिर बार बार अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ठीक है, ये वो हेड है, वो उनके अधिकार में ये सब आता है, ऐसे वो बहुत आवश्यक है, वो भी डिसाइड करना चाहिए। दूसरी बात, सेट गोल्स फॉर फैमिली, हमारे परिवार के क्या उद्देश्य है। मेरे उद्देश्य तो मुझे पता है क्या, मुझे ये बनना है, मुझे वो पैसा धन का एकत्रित करना है, बड़ा बनना है, ये सब हो गया। परिवार का क्या उद्देश्य है, एज ए फैमिली व्हाट इज माय, व्हाट इज अवर गोल, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये दोनों की जिम्मेदारी है। हेड डिसाइड करे लेकिन एक्सिक्यूट करना बाकी की, जैसे हेड ने डिसाइड किया कि ये फैमिली का गोल है और उसमें कोऑपरेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? एवरीबडी है। फैमिली के गोल को डिफाइन भले ही कोई हेड करे कोई एक करे, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो इन्होंने गोल डिफाइन किया तो ये करते रहे वो करते रहे, हमको क्या करना है? इट्स वेरी रॉन्ग, है ना। सो दोनों की जिम्मेदारी वो बनती है, सेट गोल। और एक बहुत छोटा सा मुद्दा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, शॉप फॉर फूड, दाल चावल गेहूँ लाना, सब्जी लाना, फल फ्रूट लाना, नमक मीठ मिर्ची तेल खरीदी करके लाना, किसकी जिम्मेदारी? डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने के बाद क्रिटिसाइज नहीं करना एक दूसरे को, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी, ये तो मेरी जिम्मेदारी, डिफाइन कर लीजिए। भले ही आप ये जो चार्ट बना रहे ना वीकली चेंज कर दीजिए, हर एक हफ्ते के लिए बनाइए, नेक्स्ट वीक देखेंगे कि भैया अभी ये सेवा करते करते मैं थक गया, जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, चलता है 8 दिन बाद जी डिफाइन कीजिए, एवरी संडे चार्ट विल बी चेंज, थोड़ा फ्रेश, थोड़ा नई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, थोड़ा कुछ करना चाहते हैं। कभी कभी क्योंकि ये लगता है ना कि अरे क्या है, आपने जो जिम्मेदारी ली हो तो एकदम आसान है, हो तो मैं ऐसी कर सकती हूँ, ये जरा करके देखो, ऐसा होता है ना। तो उस केस में क्या करें कि 8 दिन बाद कुछ कुछ पॉइंट को, ना कि पूरा चार्ट, कुछ कुछ पॉइंट्स को दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिफाइन करिए और रिसेट कीजिए उसको। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, शॉप फॉर फूड, सब्जी लाना, ये करना वो करना, क्योंकि माताजियों की वो बहुत ज्वलंत समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है, रोज क्या बनाए खाने के लिए। प्रभु जी लोग तो वो ऑर्डर छोड़ के चले जाते हैं, ये लाएंगे कहाँ से, बाजार में जाना लाना करना, ये सब वेरी डिफिकल्ट है ना। बाकी के फैक्टर्स तो है ही है, बट ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसमें जरा जिम्मेदारियों को शेयर करे तो अच्छा है, एक एक के ऊपर पूरा बोझ ना है। ट्रांसमिट स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल और कल्चरल ट्रेडिशंस की चर्चा करें, वाद नहीं करें, चर्चा करें, डिबेट नहीं, डिस्कशंस, कल्चरल डिस्कशंस करें, थोड़ा कल्चर पे आधारित डिस्कशंस करें, पॉलिटिकल डिस्कशंस की आवश्यकता नहीं है, कल्चरल डिस्कशंस, ट्रेडिशनल डिस्कशंस जो अच्छे एनकरेजिंग है, इस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों को, बच्चों का लालन पालन बड़े प्रेम से करें, इरिटेशन ना हो बच्चों को बड़ा करते वक्त, हमारे मन में कोई इरिटेशन आवेग ये सब है ना, कभी कभी बहुत बहुत ही बच्चे इरिटेट कर देते हैं, तो वो इरिटेशन 3-4-5-6 दिन तक रहता है, बच्चे के साथ भी रहता है, तो इस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण नहीं हो सकता है। बच्चे का पालन पोषण करते वक्त व्यक्ति के हृदय में वार्म हार्ट एंड कोल्ड हेड उल्टा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस दिन हुआ है नहीं चर्चा, पहले सेशन में हुई है कि नहीं? क्या हुई, क्या चर्चा है?
दिमाग अभी ठंडा रखना चाहिए।
हाँ,
दिमाग गर्म रहता है और हार्ट
ठंडा हो जाता है। हृदय में जो वार्म होना चाहिए, हार्ट शुड बी वार्म, वार्म होना चाहिए, वार्म वेलकम है ना, वार्म होना चाहिए, होता क्या है कोल्ड हो जाता है, रोज रोज के इरिटेशन से हार्ट कोल्ड हो जाता है और सर जमदग्नि गर्म हो जाता है, एकदम ज्वालामुखी हो जाता है, जो उल्टा होना चाहिए। बच्चों का उस प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए और इनिशिएट इमोशनल एक्सचेंजेस, इमोशनल पॉइंट्स जो होते हैं ना वो बातों को शुरुआत कीजिए, बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए, एक्सचेंज कीजिए एक दूसरे के साथ। कोई इमोशनल सब्जेक्ट होता है पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक परिवार में कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इमोशनल होते हैं, उसमें बड़े सबके सब सेंसिटिव होते हैं उस विषय पे। सो वो जो सेंसिटिविटी है, वो जो इमोशंस है, उसको शुरुआत इनिशिएट करना चाहिए डिस्कशन एक्सचेंज के लिए। किसी एक ने वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इमोशनल फैक्टर्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा, हम सब चर्चा करेंगे, डिसाइड होना चाहिए कि कौन वो करेगा शुरुआत है? और प्रोवाइड स्पिरिचुअल लीडरशिप, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, इन सबको आध्यात्मिकता के विषय में बताना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, स्पिरिचुअल लीडरशिप वो कौन बनेगा डिफाइन, पत्नी बनेगी या पति बनेगी स्पिरिचुअल लीडर डिफाइन कीजिए और चार्ट सामने रखिए। यदि पत्नी बनती है स्पिरिचुअल लीडर, वो कभी स्पिरिचुअलिटी के विषय में कुछ बोलती है तो सुनना चाहिए, सुने उसको, सो डिफाइन इट। या दोनों स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं तो ठीक बात है, लेकिन अभी जो हमने क्या कहा, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग, ये मीटर सब जगह अप्लाई होता है। कभी कभी रहने का भी समस्या होती, कई बार घर बदलने पड़ते हैं बहुत लोगों को, साल में दो चार बार बदलना होता है, कभी एक बार, कभी 50, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों ये डिसाइड करें कि वेयर टू लिव, कहाँ रहना है हमको, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसी ने लेनी चाहिए कि कितने दिन कहाँ रहना है, नहीं तो उसके ऊपर भी बहुत वाद विवाद स्पर्धा हो जाती है। डिसाइड विच अप्लायंसेस एंड फर्नीचर टू बी बॉट, मतलब घर के लिए क्या सामग्री लेना है, ओवन लेना है, फ्रिज लेना है, क्या लेना क्या है, टोस्टर लेना है, फर्नीचर कैसे लेना है, ये डिसाइड कीजिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
वाइफ ले,
हाँ तो वाइफ ले, कोई भी ले, नो प्रॉब्लम। यदि वाइफ ने ली है तो हस्बैंड ने पूरा हेल्प करना चाहिए उसमें,
करते ही
है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसकी इसलिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी एक आध बार वाइफ ने कुछ खरीद लिया तो कभी चिढ़ते तो नहीं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो वाइफ की जिम्मेदारी है, वाइफ ने कुछ ले लिया, अरे क्या फालतू में ले लिया, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी, तो अच्छी बात है।
तो कुछ मालूम नहीं,
वो बात अच्छी है, ऐसी बात होती है और आप भी उसको एग्री है कि ठीक है, आपको सब
मुझे आपको बता दो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शास्त्रों में डिसाइड नहीं है।
हाँ शास्त्र शास्त्र के आधारित, प्रभुपाद जी ने तो इससे भी
जल्दी, तो आप जो बता रहे हो ना प्रभु जी,
प्रभुपाद जी ने इससे भी ज्यादा बताया, मैंने तो बहुत रिफाइन किया है, बहुत रिफाइन किया है। मैरिड कपल को क्या करना है यदि वो समझेंगे ना, तो वो प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो एकदम स्ट्रिक्ट मैरिड लाइफ है। और यदि आप ये बोलेंगे कि ये होता ही नहीं है तो फिर मैरिड लाइफ में कोई होप्स नहीं बचती है। एक सिंपल बात है कि सब्जी खरीदने की किसकी जिम्मेदारी, यदि ये कहेंगे कि होता ही नहीं है तो मैरिड लाइफ में कुछ नहीं बचता है, फिर आप द्वंद्व के सिवा जीवन में कुछ नहीं रहेगा। और अचानक एक दिन 70-80 साल के हो गए, 65-70 साल के हो गए, और जब सेम बातें अपने बच्चे करेंगे, सेम लड़ाई अपने बच्चों के संसार में हम देखेंगे, और जब उनके वो उनको बोलेंगे क्या सिखाया तुम्हारे माता पिता ने, तब हमारी आंख खुल जाएगी कि अरे ये शादी सादी सादी सिंपल बातें थी, वो मैं कर लेता। आज तो हमको ये लगता है कि छोटी छोटी बातें हम करने जाते हैं लेकिन वो समस्या आते हैं, द्वंद्व होती, होता ही नहीं है, माता जी बोलती प्रभु जी होती तो बेकार है, आज हमको ये ऐसे लगता है। लेकिन सिचुएशन जब अराइज होगी और जब हमको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा तब हमारे पास समय साथ नहीं देगा। शास्त्र हमको कोई भी चीज बाद में नहीं बताते हैं, शास्त्र हमको जो कुछ भी बताते हैं ना प्रभु जी, वो वार्निंग सिग्नल है। मैं आपको बता नहीं रहा हूं ये, मैं आपको वार्निंग, शास्त्र के आधारित वार्निंग दे रहा हूं। इस वार्निंग को समझना है तो समझे, नहीं समझना है तो मत समझे, नहीं समझना है तो सफरिंग के लिए तैयार हो जाइए, उतना अपना टॉलरेंस बढ़ाइए, उतनी अपनी सहनशीलता बढ़ाइए। सहन कुछ भी होता है तो सहन करने की, कोई कुछ बोलता है तो सहन करने की शक्ति बढ़ाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने पारिवारिक जीवन से कुछ भी अपेक्षा मत कीजिए। हो क्या रहा है मैं बताऊं, हम कर नहीं पाते, जैसे आपने बोला ना प्रभु जी हो ही नहीं पाता है, जब वो सिचुएशन आती है हो ही नहीं पाता है। ठीक है, हो नहीं पाता है तो फिर आप फैमिली पारिवारिक जीवन में आनंद की अपेक्षा क्यों करते हो? व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ? क्यों? अपेक्षा तो बहुत है, सुखी जीवन की अपेक्षा तो बहुत है। एक्सप्लॉयटेशन, केवल उपयोग लेना दूसरे का, इस आधार पे कभी भी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप तीसरे स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में देखिए, वहां पे मैरिड लाइफ का पूरा अध्याय है। वो आप पढ़ी, अब ये सुनेंगे भी आप ना तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत कठिन है। कहाँ तुम वो बता रहे थे सब्जी वब्जी लेना, बर्तन वर्तन लेना, और कहाँ ये बता रहे हैं कोई इतनी बड़ी बात। तो प्रभु जी मैरिड लाइफ में कोई होप्स नहीं बचेगी, हैप्पी मैरिड लाइफ में कोई भी होप नहीं बचेगी। मैरिड लाइफ को हैप्पी करना है, आनंदमय करना है ना, तो जिम्मेदारियों का एहसास होना पड़ेगा दोनों को। मैं एक ही बात नहीं कर रहा, दोनों को जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। यदि जिम्मेदारी का एहसास केवल एक ने ही ठेका लिया तो वो नहीं हो पाता है, मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मेरा बोलने का मतलब एक है, शास्त्रों में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती तो ये
फिर, ये मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ, शास्त्र में की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको। आपको पता, यदि एक बात पता हो, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में अपने पारिवारिक जीवन में जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियां किस प्रकार से रहती थी। प्रभु जी शास्त्र में सब कुछ है, हमने पढ़ा नहीं है, ऐसी समझ से हाँ नहीं, उसमें ये
आपने बहुत
शास्त्र प्रभु जी अत्याचार नहीं करता, शास्त्र बोलता है कि आप डिसाइड कीजिए। अभी यदि वाइफ 50-100 साल का लाइफ का वाइफ का जीवन है तो वाइफ 100 साल तक क्या कि मार्केट में जाके सब्जी खरीदती रहेगी? तो इसलिए जिम्मेदारियों को आप एक्सचेंज कीजिए। हमने शास्त्र क्या कहते हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि आप किसको क्या करना है। इसमें मटेरियल डिफरेंस है, भौतिक स्तर पे हम सबके विचार अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, मन भी बड़ा विचलित है, सब कुछ डिफरेंट है।
जब एक एज लिमिट आ जाती है तो तब तो अपने आप दोनों सरेंडर हो जाते हैं।
लेकिन तब तक वही तो प्रभु जी, तब तक नहीं, तब तक क्या होता है प्रभु जी,
अपने आप काम करने की चेष्टा। जब एक एज लिमिट के पहले प्रभु जी आप बोलते हो बहुत वाली बात, ये तो फिर वही बात हो गई लड़ाई झगड़ा।
नहीं, इतना तो डिसाइड करना ही चाहिए ना प्रभु जी,
प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। नहीं,
नहीं, वो डिसाइड होता है प्रभु जी, डिसीजन में तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ किस में होती है मालूम है? वही बात बार बार करने में तकलीफ होती है, डिसीजन लेने में नहीं। कभी आपको बोला जाए कि 2 दिन आप सब्जी लाओ, आप मना ही नहीं करोगे, लेकिन ये कहा जाए कि आप 50 दिन सब्जी लाओ सुबह उठ के, तो समस्या आएगी। तो इसलिए कहा गया है कि ये चार्ट बनाओ और इसको एक्सचेंज करते जाओ।
मेरा उद्देश्य नहीं कि मजाक में करना है
यार। नहीं, मैम आपका प्रश्न मैं अच्छी तरह से समझा हूँ। आपको एकदम रेडी रेकनर चाहिए, ये हस्बैंड ये वाइफ, ये हस्बैंड ये वाइफ, ऐसा चाहिए, ये बोल रहे हो ना आप। मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिए। मान लो किसी के पिंड में कोई बात होती ही नहीं है, आपको ये कहना है कि आपकी वाइफ आपको बैलेंस शीट बनाने में मदद करिए, उसकी वो थोड़ी जिम्मेदारी उसमें ले लें। लेकिन पत्नी का वो पिंड ही नहीं है, उनको वो जमता ही नहीं है। आपकी अपेक्षा है कि आपकी पत्नी कभी कभी बिल भरे जाके, ये बिल वो बिल वो बिल, लेकिन वो उनके पिंड में ही नहीं है, वो उनको सूझता ही नहीं है, पता ही नहीं है या सूझता ही नहीं है।
लेकिन सब मालूम
नहीं, वो अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें कि उसको मालूम है इसको मालूम। दूसरों को कभी अपने पारिवारिक जीवन में इन्वॉल्व मत कीजिए, कोई भी दो लोग सेम नहीं। वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ,
आजकल 90% बिल लेडी,
वो आजकल जाने दो, वो आप उन लेडीज की बात कर रहे हो जो भरती है, लेकिन 10% ऐसी भी तो है जो नहीं भरती है। हो सकता है हमारी पत्नी उसमें होगी 10% में, आप क्यों फोर्स कर रहे कि आप 90% में आ जाओ, तो इरिटेशन होगा फैमिली लाइफ में।
यही मैं बोल रहा हूँ।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ,
अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए,
ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपस में डिसाइड करें। अभी आपको तो पता चल गया कि वो क्या नहीं कर सकते, और उनको भी पता चल गया कि आपको क्या, आप क्या नहीं करते। यदि आपको अभी तक ये बात नहीं पता चली है, तो अभी तक आपने एक दूसरे को समझा ही नहीं है। एक दूसरे को केवल ये पॉइंट पे समझिए कि ये क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ।
मैं बोलता हूँ 50 की एज के बाद अपने आप सब समझने लगते
हैं। नहीं, वो कंपल्शन हो जाता है, समझता कोई नहीं है, वो तो मजबूरी हो जाती है, इसलिए लेते हैं। वो मजबूरी है तो मजबूरी का लाइफ हैप्पी लाइफ होता है, इट्स नॉट हैप्पी लाइफ प्रभु। वो क्या हो जाता है, मजबूरी है, अभी क्या करेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूरी का लाइफ। तो इसीलिए कहा जाता है कि 50 के बाद का लाइफ तो भयंकर टॉर्चर वाला होता है, क्योंकि सब कुछ मजबूरी में करना पड़ता है। तब तक कुछ अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई, तब तक कुछ समझ ही डेवलप नहीं हुई, केवल तू तू मैं नहीं प्रभुजी, आपका आपका 45 यदि है, तो भगवान ने मान लो आपको 90 का उम्र दिया होगा, तो आपके भी 45 बच्चे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ समझिए, कि जो 45-46 इस रेंज में है, और वो ये सोचता है कि 5 साल बाद मैं वैसे ही सरेंडर करूंगा, यदि आप ऐसे सोचते हैं तो इसमें ज्यादा गलती है। नहीं, ऑलरेडी आप लेट हो गए, ऑलरेडी 50 साल में। मैं आपको एकदम विश्वास और शास्त्र के आधारित उत्तर दे रहा हूं, 50 साल में बहुत कठिन होगा आपको एडजस्ट करना, बहुत भयंकर कठिन हो जाएगा। जैसी उम्र बढ़ती, आप किसी 60 वर्ष के व्यक्ति को समझा के दिखाइए मुझे कोई बात। चलो अपन अपने अपने घर की उदाहरण, मेरे मामा, मेरे माता या मेरे पिता को मैं कोई बात समझाने जाता हूँ, समझते इतने आसानी से?
अपने से छोटे से नहीं समझेंगे, वो वाइफ से बराबर समझेंगे।
नहीं, कौन सा बड़ा ढूंढ के लाएंगे आप?
वो बोलते हैं एक मयान में दो तलवार, वो बच्चा है, वो नहीं समझा सकता, क्योंकि वो
कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने जो समझ रखा है 60 साल में, उसके आगे कोई नहीं समझा सकता उनको। जो वो समझ रखे है ना 60-65 साल की उम्र तक, उसके आगे ब्रह्मदेव चतुर्मुख से भी बोले तो नहीं समझ में आएगा आफ्टर द एज ऑफ 50-55। क्योंकि हम तो सब समझ गए हैं, जैसे समझो अभी आप ये कह रहे हैं कि ये तो आसान बात है, वो तो पैसे डिसाइड कर लीजिए, 50 साल में ऑटोमेटिक हो जाता है। अब 50 साल में जो ऑटोमेटिक हो गया आपके लिए, तो वही सब कुछ हो गया, हमको तो समझ सब समझ में आ गया 50 साल में। तीसरी बात, आप एडजस्ट ही नहीं करोगे, पत्नी की जो भी बात होगी वो एडजस्ट ही नहीं करोगे, या पति की बात जो भी होगी पत्नी एडजस्ट ही नहीं करेगी, कर ही नहीं पाएगी। प्रभु जी हमारे शास्त्र प्रिकॉशंस देते हैं, हमारे शास्त्र एडवांस वार्निंग देते हैं, हमारे शास्त्र 50 साल के बाद सब कुछ बताते हैं। ये जो धारणा है, बेसिक धारणा, यही गलत है समाज में। हमारे शास्त्र उम्र के इवन जन्म से ही, जब गर्भ में शिशु रहता है ना, उस समय क्या सिचुएशन होती है वहां से वर्णन करते हैं शास्त्र। हमारे शास्त्रों में वहां से एक्सप्लेनेशन है प्रभु जी, गर्भ में कैसा शिशु रहता है वहां से, तो मृत्यु शैया पे कैसे जाता है व्यक्ति, वहां तक हमारे शास्त्र वार्निंग देते पहले एडवांस में, आपको बाल्यावस्था में कैसे रहना है, बच्चे का कैसे पालन पोषण होगा, बच्चा कुमार अवस्था में आएगा तो कैसे पालन पोषण होगा, बच्चा युवा अवस्था में आएगा तो कैसे पालन पोषण होगा, बच्चा गृहस्थ होगा तो कैसे पालन पोषण होगा। ये शास्त्र में विस्तृत डिटेल है, जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं सारे शास्त्र के शब्द है, केवल मैंने इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में उतारा है। शास्त्र ने कहा है कि ददाति, क्या करना है एक दूसरे के लिए, क्या देना है, क्या लेना है, क्या खिलाना है, क्या खाना है, ये सब शास्त्र में दिया है। मैंने उसको क्या किया है, उसके शब्द में प्रैक्टिकल वर्ड में ट्रांसलेट किया है, कि आपको बाजार से किचन के लिए सामान लाना है, किस लिए लाना है, कुछ किसी को देने के लिए, कुछ किसी की सेवा करने के लिए, ये शास्त्र कहते हैं, परंतु मैंने उसको प्रैक्टिकल रूप दिया है। आपको ये करना ही होगा, आपको दोनों को बैठना पड़ेगा। अभी तक हमारे पारिवारिक रचना में ये होते आ रहा है कि कभी भी दोनों बैठते नहीं है, एक पति अपने मन से डिसाइड कर लेता है, पत्नी अपने ही मन से डिसाइड कर लेती है, और इसीलिए फिर हर छोटे चीज पे द्वंद्व होता है, ए क्या है तुमने ये किया, ए तुमने ये किया, ये सब शुरू होता है। दोनों के एग्रीमेंट से डिसाइड करो, आप कोई कुछ बात करना चाहते हो और पत्नी को ऑब्जेक्शन है तो उसको छोड़ दो, पत्नी के लिए छोड़ दो उसको, ये बात बिल्कुल उतारनी पड़ेगी ब्लड में। एक दूसरे के लिए बातें छोड़ना है, ब्लड में उतारना पड़ेगा, नहीं तो जो बच्चे पहले से चलते आ रहा है वही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कि मैंने तो यही ऐसा ही करता हूं और मैं यही करूंगा, और आगे मैं करते आया हूं और आगे भी मैं ये करूंगा, और अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे जरा नाम बताए किसी के जीवन में अपने आप ठीक हुआ, अंतिम समय में मैंने अच्छे अच्छे लोगों को रोते हुए देखा है, बड़ी बुरी तरह से रोते हुए देखा है। लास्ट पैच ऑफ लाइफ, बच्चा सुनता नहीं, पति या पत्नी सुनते नहीं, कोई मेरी वैल्यू करता नहीं, समाज में कोई कीमत है नहीं क्योंकि ओल्ड हो गए। ये सिचुएशन सबके साथ होती है, सबके साथ, कितना भी इंटेलिजेंट आदमी होने दो। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर को पहले से ही प्लान नहीं किया, इन सारे फैक्टर्स को पहले से ही प्लान नहीं किया गया। प्रभु जी आप देखिए, एक बार 60-65 में हम आ गए ना, तो अचानक हमारी मार्केट वैल्यू घसर जाती है। देखो आप, देखो कहां कहां घसरती है पता है आप? सबसे पहले परिवार में घसरती है। पूर्व का समय ऐसा था कि बुजुर्गों का आदर होता था, अभी नहीं है, अभी उल्टा है। घर में सबसे छोटा है उसका आदर है, उसका बहुत आदर है। वो जो समय आएगा उस समय हमारी वैल्यूएशन एकदम एकदम लो लेवल, हमारे पास कुछ विषय भी नहीं रहेगा चर्चा के लिए। कोई समाज हमको एक्सेप्ट, समाज क्या है, हमको तो एक रिजेक्टेड मटेरियल सोच लेगा। एक क्या है, रिजेक्टेड मटेरियल है, क्या फायदा इनसे बात करके। ऐसा एक समय अमेरिका में ऐसी स्थिति थी कि जो 30 के ऊपर, 30 वर्ष के ऊपर जिसका उम्र है ना प्रभु जी, उसको यूजलेस समझते थे। जो भी कुछ फोर्स है, वर्किंग है, उत्साह है, एनर्जेटिक है, बातचीत करने के लायक है, वो बिलो 30। वो कल्चर इंडिया में आ गई है, थोड़ा एज डिफरेंस बढ़ गया है। अभी हम 50-60 के आसपास की उम्र के व्यक्ति को ऐसा समझते हैं, और हम 50 की बात करें, 5 साल बाद आप 50 हो जाएंगे, 7 साल बाद मैं भी 50 का हो जाऊंगा। उस समय वो जो 60 साल का, जो अभी जो 60 साल में समझते, हो सकता है अपने टाइम तक वो 50 में आ जाए। 50 साल के व्यक्ति को रिजेक्टेड मटेरियल समझे सब, क्योंकि पति भी पूरे टाइम ये किची 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 करते करते फ्रस्ट हो गया है, पत्नी भी पूरा 60 साल तक ये सब करते 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 दूसरों ने थोपा हुआ, करते करते दूसरों ने थोपा है, पति ने थोपा है, कभी डिस्कस नहीं किया है। थोप के मुझे जिम्मेदारी दे दी है, थोप के जय करो तुम, तो वो थोपी हुई जिम्मेदारी को निभाते निभाते 60 साल हो गए, वो तभी उसको वहां तक वो भी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया। सो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और अचानक डिवेल्युएट हो जाते हैं हम, हमारा शेयर का प्राइस एकदम जीरो पे आ जाता है, फेस वैल्यू भी नहीं मिलती है। फेस वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू की भी वैल्यू नहीं रहती है प्रोडी, और वो ना हो इसके लिए ये क्लास है, इसके लिए ये बात है, इसके लिए एप्लीकेशन है, ये शास्त्र पे आधारित है। इसका सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, आप दशम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारका लीला है वो पूरा आप पढ़ सकते हैं, कि किस प्रकार से गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। उसके पश्चात आप श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में आप पढ़ सकते हैं, कर्दम देवहूति संवाद आप पढ़ सकते हैं, कर्दम मुनि ने देवहूति के लिए क्या क्या किया वो आप पढ़ सकते हैं, देवहूति ने क्या क्या कहा, पत्नी ने पति को क्या क्या कहा, डिमांड किया, पत्नी ने कौन सी डिमांड को सप्लाई किया पति ने, और पत्नी ने कौन सी डिमांड, एवरीथिंग इज देयर, सब डिटेल में। परंतु हमारे शास्त्र, बहुत लोग कहते हैं हमारे शास्त्र क्या है, पुरुष प्रधान है, स्त्री के ऊपर अत्याचार करते हैं। यदि वैसा होता ना, तब आप जो बोल रहे हो बात सत्य होती। कौन सी, कि सीधा सीधा बताओ, स्त्री ने ये करना चाहिए, पुरुष ने ये करना चाहिए। परंतु हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कि कुछ ऐसी चीजें हैं दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करो, दोनों मिलके डिसाइड करो। प्रभु कोई भी कार्य होता है ना, मिलके करना होता है, ये विवाह का अर्थ है, विवाह। और अकेले डिसाइड करके करना वो शादी होता है, वो अर्थ है शादी का। हमारे कल्चर में हम विवाह करते हैं, सो विवाह अर्थात हमको मिलके करना है, मिलके सोचना है। चलो आगे फटाफट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। लेकिन अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। उन्होंने जो अभी हर परिवार में जो फेस कर रहे हैं ना, वो पॉइंट उन्होंने बड़ा मतलब अच्छे से बोला, कि ये सब आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कुछ होता नहीं है, होता है इसलिए नहीं कि हमारे एटीट्यूड्स, अभी तक के जो एटीट्यूड्स हैं, कोऑपरेशन, हम बैठ के बात नहीं करते, पत्नी पति पति पत्नी बैठ के बात डिसाइड नहीं करते कि कौन क्या करेगा, अंडरस्टूड कर लेते, ये तो वो कर लेंगे, ये तो ये कर लेंगे, खत्म काम, अपने ही मन का उनके ऊपर थोप देते। So, ये करे तो अच्छी बात है, ये करना चाहिए। कौन सा पॉइंट चल रहा था, घर के लिए सामान खरीदा, सेट गोल्स फॉर फैमिली। और जो एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये इसका भी निर्णय लेना चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी किसी को देनी चाहिए कि कब कहाँ कैसे दान करें, मतलब चैरिटी है ना, हम देते हैं, दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो इसमें भी सोचे डिफाइन करके कौन है जिम्मेदारी लेगा, कब कहाँ और कैसे दान करना है, कहाँ पे देना है, इसके ऊपर भी दोनों मिलके डिसाइड करके इसके ऊपर कौन डिसाइड करेगा, दोनों डिसाइड की थी। हमारे शास्त्र में दोनों का महत्व है। क्रिएट एंड मेंटेन हाउस होल्ड रूटीन्स, जो रूटीन है, अस्ताव्यस्त गृहस्थ जीवन मत बनाइए, उसको आश्रम कहा गया है, अस्ताव्यस्त नहीं बनाना है, आपको एक रूटीन सेट करना है, रूटीन अवश्य सेट की। कई बार हमने कई बातें बताई है रूटीन सेट करने की, सबको बताई है ना, इंडिविजुअली बताइए कि प्रभु जी सुबह उठ के ये कीजिए, तो फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए। मेरे ख्याल से मैंने सबको बताया है, कई बार बताया है कि डेली रूटीन कैसे सेट किया जाना चाहिए, है ना। सो उसकी जिम्मेदारी किसी ने लेना चाहिए कि क्या कैसे रूटीन, हाउस होल्ड रूटीन कैसे शुरू करें। जो एक और महत्वपूर्ण बात है जो मोस्टली प्रभु जी करते हैं वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं घर में, इससे बहुत इरिटेशन होता है, कभी अचानक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, ढूंढो, तुमने रखा नहीं शुरू हो जाता है। सो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट्स, बिल्स, या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, डीड्स वगैरह, एग्रीमेंट्स, ये सब रखने की किसकी जिम्मेदारी है, ये भी दोनों मिलकर डिसाइड कीजिए। और वो उसके ऊपर ध्यान रखिए कि ये फलाने चीज, हाँ वो वहाँ रखिए, आधार कार्ड वहाँ रखा है, पैन कार्ड वहाँ रखा है। तो ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर शास्त्र में इसमें बहुत विस्तृत वर्णन है। मैंने इसको प्रैक्टिकल नाम दे दिया है, मैंने उसको डॉक्यूमेंट लिख दिया है। शास्त्र में कहा गया है कि अति महत्वपूर्ण विषय को की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैंने अति महत्वपूर्ण विषय में ये सब डाल दिया है, क्योंकि आपकी भी समस्या है, मेरी भी समस्या है, इनकी भी समस्या है, इनकी भी समस्या है, इनकी भी समस्या है। और ये समस्या होने पर भी हम इसके ऊपर बहुत नेग्लिजेंट हैं, हम ध्यान नहीं देते इसके ऊपर ज़्यादा, और वो चलते रहता है, बढ़ते रहता है, झगड़े होते रहते हैं, उसमें नुकसान भी होते रहता है, कई बार डॉक्यूमेंट गुल हो जाता है, डुप्लीकेट करने के लिए एफिडेविट करना पड़ता है। सो ये छोटी 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 बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करती है इरिटेशन बढ़ाने में, इससे बहुत इरिटेशन बढ़ता है। सो मैं समझता हूँ सभी ने ये चार्ट लिखा होगा, सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट, सीरियसली डिसाइड कीजिए, बैठिए एक मीटिंग कीजिए ना, बाहर इतने हजारों मीटिंग करते हैं, घर में वाइफ के साथ एक मीटिंग नहीं कर सकते, मीटिंग कीजिए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फैमिली मैटर है, समाज के मैटर में इतना इन्वॉल्व होते हैं, सोसाइटी के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं, परिवार के मैटर में, शाम को रखो मीटिंग आज। सही बता रहा हूँ, शाम को मीटिंग रखो, इंपॉर्टेंट मुद्दे है, सोसाइटी की मीटिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उसके पहले परिवार है, सोसाइटी के पहले, फिर सोसाइटी। नहीं, वो आपका एकदम एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल राइट है, उसमें आपको कुछ समस्या है तो आप मुझे बताओ, बट आप दोनों डिसाइड करो, सब दो दो मिलके दोनों लोगों का ही मीटिंग करो, उसमें आपको कुछ डिफिकल्टी है तब आप मुझे बात करो, वो तो आपका एक्सक्लूसिव राइट है।
मीटिंग ही नहीं होगी
माता जी, देखिए अभी आप ही इनको समझा सकते हैं, बोल रहे मीटिंग नहीं होगी,
उसी बात में झगड़ा होगा, इधर बैठो उधर
बैठो। तो अच्छा वो आपने मुझे समस्या बताई, तो नहीं अच्छा, ये बहुत गुड क्वेश्चन, तो ये प्रश्न का सोल्यूशन फिर मैं ढूंढूंगा। यदि मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो फिर मैं स्टार्ट करवा दूंगा, मैं टाइम डिसाइड करूंगा, प्लेस डिसाइड करूंगा, और मैं खुद आऊंगा और आपकी मीटिंग स्टार्ट करवा दूंगा और मैं निकल जाऊंगा। एंड रिजल्ट तो 15 दिन बाद समझ में आएगा, अभी नहीं है ना, बट इट इज वेरी सीरियस, जो पॉइंट बताए गए हैं वो देखो, हम सब जीवन सुखी जीवन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना, कुछ करना पड़ेगा, कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, बिल्कुल नहीं, मैं आधे आदमी लोग और आधे स्त्री लोग मान ले तो पूरा ही हो जाएगा, फिर बराबर बोले हैं वो, बराबर बोले कि आधे आदमी लोग मान ले आधे स्त्री लोग मान ले तो 100% हो जाएगा। हाँ, तो हम आपने हम मीटिंग करेंगे आपसे, आपका मीटिंग शुरुआत कर देंगे और फिर आप डिसाइड कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा पॉइंट केवल इतना है कि यदि ये पॉइंट जितने मेहनत से निकाले गए उतने मेहनत से फॉलो नहीं हो गए तो बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट मैरिड लाइफ। Choice is yours. Happy married life and worst married life, दो ही बातें हैं, तीसरी बात अस्तित्व में नहीं है। Choice भी आपको है, क्या करना है? नहीं, बीच का कुछ नहीं होता है, वो भ्रम होता है, बीच का भ्रम होता है, बीच की सिचुएशन है, सुख या दुख दोनों के बीच में कुछ नहीं, या तो सुख होगा या दुख होगा, बीच की सिचुएशन ही नहीं, कोई सोचता है बीच की सिचुएशन, वो भ्रम है, इल्यूजन, उसी को इल्यूजन कहते हैं। सो यदि इसको अप्लाई करना है तो सुख, लेकिन यदि अप्लाई नहीं करना है तो प्रभु जी सुख की अपेक्षा मत कीजिए क्योंकि वो आपको बहुत टॉर्चर करेगा। मैं आपको आग्रह नहीं कर रहा हूं अप्लाई कीजिए, आप बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए, हो नहीं सकता है छोड़ दो, काहे के लिए करना है, नहीं मत करो, लेकिन सेम टाइम सुखी जीवन की अपेक्षा मत करो। हमारी समस्या क्या हो रही है, करने के लिए भी कुछ राजी नहीं है, होता नहीं है, और अपेक्षा सुख की है, हो नहीं पाएगा। फिर दुख को झेलने की आदत डाल दो, कंप्लेन मत करो एक दूसरे की। लेकिन पहले आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्या है, ये जो बेसिक जो बातें होती है जो हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, इससे तो ऐसे होगा, उससे तो वैसे होगा, वो तो ऐसे होगा, ये हमारे मानसिक स्तर पे कैलकुलेशंस होते हैं। उसको देखिए माता जी, ये अभी आप ये नहीं बोल सकते कि वो बच्चा ये एटीट्यूड कहाँ से सीखा, माता से सीखा कि पिता से सीखा, वो बच्चा देख देख के सीखा, जैसे भी सीखा वो देख देख के सीखा। हाँ, अभी वो सीख गया है, ये पहले ही आपको डिफाइन करना होता है माता जी। हाँ, अभी आपको लेट हो गया, प्रश्न ये है कि लेट हो गया तो अभी क्या करें। अभी जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो ये कि आप मीटिंग करें, आप बार बार फ्रिक्वेंटली इस बात पे चर्चा करें, क्योंकि ये नहीं है, मैं देख रहा हूँ किसी के भी परिवार में नहीं, हम लोग हंसते भी है ना तो ये फेक लाफिंग है। आप अपने परिवार में कभी हंसे मुझे आप बताइए प्रभु जी, जो भी सब जो जो हंसी आ रही है, अपने पत्नी के साथ दिन में कितनी बार हंसते हैं? नहीं हंसती ही नहीं है, डेली नहीं, 15 दिन में एक बार। सो ये जो आपकी अभी की जो हंसी है ना,
कुछ बोलो ना, आपके लागू,
ये जो अभी की आपकी जो हंसी है ना, ये फेक हंसी है, अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत दबा हुआ है। आप वो जो दबा है ना, वो और दबा रहे हैं हंस के। मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, बट हंस हंस के आप क्या कर रहे हैं, एक तो ये फेक हंसी है क्योंकि आप अपने पत्नी के साथ हंसी नहीं सकते। सो अभी हंसे भी नहीं है हफ्ते में क्या, मैं समझता हूँ महीने में भी एक बार आप बैठ के हंसते नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन अराइज ही नहीं करते होंगे आपकी पत्नी के साथ बैठ के हंसे, क्योंकि होता ही है, वही सिचुएशन ही नहीं अराइज होती है, सिचुएशन अराइज ही नहीं होती है, फिर हंसी क्यों आती है? जब परिवार में जहां पूरा जीवन बीत रहा है, जो इसेंशियल पार्ट है हमारे जीवन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारे हंसी ही नहीं है, तो बाकी जो भी हंसी है वो बोगस हंसी, वो कुछ दबाने का प्रयास हो रहा है, कुछ रियलिटी को दबाने का प्रयास हो रहा है। हम हंस रहे मतलब अपने आप को इल्यूजन में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, क्योंकि हम पत्नी के साथ नहीं हंस सकते। महीने में एक बार भी बैठ के याद की थी लास्ट कब हंसे थे साथ में, स्मरण कीजिए,
7 दिन पहले।
प्रसाद कितने बार लिया 7 दिन में?
25 बार
लिया, नहीं होता है ये, बहुत सीरियस बात है ये। आप इस बात को यदि लाइटली लेंगे तो ये अचीव नहीं हो पाएगा, बहुत सीरियस बात है। प्रभु जी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में डाइवोर्स रेट 70% है, और कभी भी किसी के भी साथ कोई भी स्टेज पे हो सकता है, ऐसा मत समझिए कि 60 साल, 60 साल में भी डाइवोर्स हो रहे हैं अभी, उम्र के 60 साल। इट इज दैट सीरियस, क्योंकि समझ नहीं पाते। हाँ, बहुत ऐसे ऐसी विचित्र घटनाएं बहुत है, बहुत विचित्र घटनाएं, कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को उसमें डालिए, वो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन कीजिए, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैंने घर में पहले सुधरना चाहिए। ऐसी जो सिचुएशन आप देखते हैं ना, उसमें अपने आप को डालना चाहिए। अरे मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, तो तब जाके आपको रियलाइज होगा। ये चीजें इसलिए हम इतना बोलने का प्रयास किए, 5-6 रविवार उसमें वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी आप समझे किए, वो इसलिए किए कि आप में एटलीस्ट 10% तो भी परिवर्तन इस चीज़ आ जाए, मिनिमम इतना एक्सपेक्ट है। और यदि इतना आया तो हम आगे पेरेंटिंग के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन नॉट बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन।
10% तो आ भी गया होगा,
नहीं, वो हमको होना पतना चाहिए, वो हमको हम उससे कन्विंस होना चाहिए कि 10% आ गया। वो आपको मालूम पड़ता है, हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हमारे पास सब कुछ है। यदि वो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ही सारे क्लासेस करने का मीनिंग है। कोई भी क्लासेस, भगवद गीता बोलो, पेरेंटिंग बोलो, या कुछ भी, पॉइंट फॉर डिस्कशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्कशन का जो मुद्दा है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुद्दा है। सो प्रत्येक पॉइंट हमको कैसे ट्रांसफॉर्म करे ये सोचना चाहिए। प्रत्येक पॉइंट हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है, ये तो उनके लिए, ये तो अपने लिए, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। नो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स नो हैप्पीनेस। नो हैप्पीनेस मीन्स फ्रस्ट्रेटेड लाइफ। मटेरियल एकत्रित करने से संसार का कोई भी प्राणी सुखी नहीं हो सकता। आप दुनिया की सबसे कीमती चीज लाइए घर में, 10 दिन मजा आएगा, 11वें दिन से उसकी मजा खत्म हो जाएगी। मटेरियल को एकत्रित करके कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इमीडिएट स्टार्ट। मत सोचिए कि मेरा तो टाइम बहुत निकल गया, स्टार्ट, फॉरगेट इट, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। आप अपने आप में बदलाव कीजिए, आप मीटिंग्स कीजिए, आप चर्चा कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए, सब कीजिए। हजारों बातें होगी माता जी, पास्ट अभी तक जो बातें हुई है ना, ये क्लास होने तक मैं बोली इसलिए रहा हूं कि हजारों बातें हैं। मैं सब क्लास लिया ही किस लिए, क्योंकि प्रत्येक के मैरिड लाइफ में 1-2-4 नहीं, हजारों इंसिडेंसेस है, हजारों बातें हैं। अभी आपको उसी बातों के इर्द गिर्द नहीं घूमना है, वही बातों के इर्द गिर्द नहीं घूमना है। अभी अभी ऐसा थोड़ी ना कि आपने सुनने से बच्चे सुधर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चों का कोई दोष नहीं, बच्चों ने कभी सुना ही नहीं है तो उनका क्या दोष है, बच्चों ने ये सब नहीं सुना है तो उनका दोष नहीं है। अभी आप भी एकदम एक दिन में सुन के उनमें बदला, कुछ 1-2 बातें उनको बोल के बदला एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं। अभी बड़े बड़े हैं, बच्चे कन्विंस हो चुके हैं किसी बातों से, दूसरी बातों से कन्विंस हो चुके हैं। आपको आपके आचरण में थोड़ा सा, दोनों को, मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो बच्चा यदि थोड़ा भी देखता है तो वो विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा, दोनों के रिलेशन में, दोनों के बीच में। और ये दोनों का प्रयास है, कोई एक साइड से प्रयास नहीं हो सकता। दोनों के बीच में बच्चा यदि प्रेम देखेगा ना, तो बच्चा बहुत अच्छा बिहेव करेगा। दोनों के बीच में यदि बच्चा तनाव देखेगा ना, तो दोनों के साथ बच्चा इसी टाइप से, अलग टाइप से बिहेव करेगा, और बच्चा अपना अपना इंडिविजुअल ओपिनियन फॉर्म करेगा। वो जिसने इंडिविजुअल ओपिनियन फॉर्म किया, उसको कन्विंस करने के लिए आपके पास कोई इलाज नहीं है। क्या इलाज है, आप पहले अपने दोनों के बीच में के जो मीटिंग्स है, जो बातचीत है, जो स्टाइल है, वो सब इस हिसाब से चेंज कर लीजिए। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए, तब बच्चे पे अपने आप असर हो जाएगा। बच्चा अभी सोच सकता है, बच्चे के पास अभी अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे ऐसे ही, बच्चे साधारण नहीं होते, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे वो समझ जाते हैं। वो देखते हैं कि इनका क्या है, इनको तो सादी सीधी सिंपल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते आता, ये क्या हमको ज्ञान सिखाएंगे। सिंपल बात है, ये बच्चे में फॉर्म, ये विचार हो जाता है। और ये रिएक्शन बच्चे कब देते हैं, जब वो उनका सब सेट हो जाते हैं या उनको ऐसे लगता है कि उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तब ये बच्चे रिएक्शन ऐसे देते हैं। परंतु बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, 1% भी दोष नहीं है। बच्चा कुछ भी रिएक्शन देता है बच्चे का दोष नहीं है, बच्चा जो देखा है वही रिएक्ट करता है। सो आप चाहते हैं कि बच्चे आपके अच्छे से रिएक्ट करें, तो आपको दोनों के बीच के रिलेशनशिप को सुधारना होगा। कभी कभी बच्चे एकदम इंट्रोवर्ट होते, कुछ बोलते ही नहीं है, पेरेंट्स के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं, मतलब इतना फ्रेंडली रिलेशन रहता ही नहीं है बच्चों का कभी कभी, क्योंकि बच्चों ने पेरेंट में वही देखा है। पेरेंट्स जब भी बातचीत करते हैं एकदम उग्र, एकदम सीरियस, एकदम काम से, जब भी दोनों बात करते हैं कुछ ना कुछ काम होता है, या तो प्रभु जी को भूख लगी होती है, प्रभु जी को कुछ साफ सफाई करानी होती है, या कपड़े चाहिए होते हैं, तभी पति पत्नी बात करते हैं, या पत्नी को कुछ खरीदना होता है, कुछ जाना होता है, बाहर होता है, तभी दोनों बात करते हैं। यही बच्चा देखते हैं जीवन भर कि कोई काम है इसलिए दोनों बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बातचीत करते हैं कभी बच्चे ने देखा नहीं, कभी नहीं देखा है। तो ये बच्चे में तो एटीट्यूड आएगा, परंतु आप अपना आचरण बदलोगे तभी जाके इसका लाभ होगा। अदरवाइज ये फिर ये साइकिल है, ये हम लोग अपने संसार में हुआ, ये सारी बातें बच्चे के संसार में ट्रांसफर होती है, फिर वो उनके बच्चों के इसमें ट्रांसफर कर, सॉल विरासत में मिलते जा रहा है सबको। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हम पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है, फोर्थ, पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन। हाँ, पॉजिटिव रहिए, अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव रहिए। अरे क्या ये तो ऐसा ही है, क्या ये तो वैसे, ये कहीं होता है क्या, ये तो हमसे नहीं हुआ। इस टाइप से भी बड़ी निगेटिव पर्सनैलिटीज होती है, कुछ कुछ हर चीज को निगेटिव लेते हैं, हर चीज को क्या करते हैं, निगेटिव में लेते हैं। सो इट शुड नॉट हैपन, वो पॉजिटिव में लीजिए, सोचिए कि आपके जीवन में अच्छा ही होगा। और लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कहीं का बहुत फलाने महाराज ने सत्ययुग में ऐसे ऐसे किया था तो इसलिए हम भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। डिवोटी शुड अवॉइड हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट देयर पार्टनर। अपने पार्टनर के प्रति अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, सब कुछ पत्नी नहीं करना चाहिए ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, या बहुत सारे काम पति ने करने चाहिए ये भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। व्यवहारिक अपेक्षाएं रखिए कि जो कर सकते हैं, अस्ताव्यस्त अपेक्षाएं एक दूसरे से मत रखिए, सिंपल सिंपल अपेक्षाएं रखिए। हर किसी के पास, हम सब के पास, बल्कि फॉल्ट है, हम सब के पास दोष है, हम दोषों के भंडार हैं, हर एक में कुछ ना कुछ दोष है, इस बात से कन्विंस हो जाइए। पत्नी में भी कुछ दोष है, पति में भी कुछ दोष है, ये कन्विंस हो जाइए। हर एक का वो स्वभाव है दोष, वो कन्विंस हो जाइए। बट हम सब ये आध्यात्मिक मार्ग पे प्रयास कर रहे हैं, इस बात की प्रशंसा कीजिए। हम सब दोषयुक्त है, कोई परफेक्ट नहीं, मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट है ना कोई परफेक्ट है, सब में दोष भरे पड़े हुए, परंतु हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए गृहस्थ जीवन में, अपने पारिवारिक विषय वैवाहिक जीवन में ये निगेटिविटीज को निकाल दीजिए, और प्रत्येक व्यक्ति में दोष है ऐसा समझ लीजिए, पत्नी में भी कुछ दोष है, मेरे में भी कुछ दोष है, ऐसा सोचना चाहिए। और कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ कुछ समझ इतनी भयावह हो जाती है वैवाहिक जीवन के लिए, बड़ी भयंकर हो जाती है। कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते अरे मैं तो वैवाहिक जीवन के अंधेरी गुफा में गिर गया हूं, तो बड़ा भयंकर है, मैं तो फंस गया हूं इसमें अंधेरी गुफा में वैवाहिक जीवन के, मैरिड लाइफ के। अभी क्या है, मैं बहुत पतित हूं, बहुत पापी हूं मैं, ये पाप के कारण मेरा विवाह हुआ है, कहां से हुआ है पता नहीं, कौन सा पाप सामने आया, विवाह हो गया और इसके कारण मैं अंधेरी गुफा में पड़ गया, ये अंधेरी गुफा के जैसा मेरे लिए है। मैं अपनी किसी भी प्रकार की बात को पूर्ण नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं फंस गया हूं, ऐसी सोच सांसारिक जीवन के लिए सबसे बड़ा धोखा है। समझना चाहिए हम अपने जीवन को न केवल खराब कर रहे हैं बल्कि हमारे से संबंधित जो भी कोई जीवन है वो सबको खराब कर रहे हैं। हमारे से संबंधित जो भी हमारे क्लोज वो सबका जीवन हम खराब कर रहे हैं ऐसी सोच रख के पछतावा कर रहे हैं और जीवन भर रोज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे सभी का जीवन नरक हो जाएगा। हमारे से संबंधित जो कोई वो सबका जीवन नरक हो जाएगा। ये सोच मत रखिए, वैवाहिक जीवन में ये सोच बड़ी घातक है। श्रील प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक पे लंदन में लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं द गृहस्था समटाइम बिकम्स मिजरेबल। जो गृहस्थ है ना कभी कभी उनकी दशा इतनी खराब हो जाती है, परिवार में इतनी खराब दशा हो जाती है, डिस्ट्रेस्ड मिजरेबल, बड़े दुखी और कष्टी हो जाते हैं गृहस्थ, भयानक स्थिति हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम अर्थात अनलेस देयर इज अ कृष्णा इट इज सिंपली अ मिजरेबल। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक जीवन में कृष्ण नहीं है तब तक जीवन दुख में है, मिजरेबल है, डिस्ट्रेस्ड है। कृष्ण जब तक आपके जीवन में नहीं आते हैं ना तब तक ये जीवन पारिवारिक वैवाहिक जीवन क्या है? मिजरेबल है, बड़ा दुखी कष्टी है, कठिन है। अनलेस बट इफ कृष्णा इज सेंटर ऑल द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, दैट इज गृहस्थ आश्रम। परंतु कृष्ण में यदि हमारी श्रद्धा है, कृष्ण में यदि भक्ति है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते लेकिन कृपा यदि हो गई तो कितने भी बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, कितने भी बड़े प्रॉब्लम भगवान की कृपा से सॉल्व हो सकते हैं। उसके लिए भगवान को केंद्र में रखना होगा। यदि भगवान केंद्र में है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कितने भी मिजरेबल होने दो, कितना भी डिस्ट्रेस होने दो, वो सब दूर हो जाएगा, वो सब निकल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हृदय में प्रभु जी देने का भाव चाहिए, देने का, पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए देने का भाव। प्रभुपाद जी ने एक जगह और गृहस्थ की व्याख्या की थी, बहुत सुंदर व्याख्या की थी गृहस्थ की। प्रभुपाद जी कहते गृहस्थ वो है जो रोज प्रसाद लेने के पहले चौराहे में जाके 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, कृपा करके बताइए कोई भूखा है क्या, 3 बार चिल्लाता है। और जब उसको पता चलता है कोई भूखा नहीं है तब घर पे आके प्रसाद लेता है। किसी दूसरे की भूख हमसे सहन नहीं होनी चाहिए, दूसरा कोई भूखा है ये हमसे सहन नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये, वो गृहस्थ है अर्थात दूसरे की कोई आवश्यकता है, भूख अनेक प्रकार की है, दूसरे की कोई आवश्यकता है, ये आवश्यकता कैसे मैं पूरी कर सकता, ये भाव होना चाहिए। गृहस्था धर्म का व्याख्या करते प्रभुपाद जी ने ये बात एक बार कही थी, तो हमको भी यह बात समझना चाहिए। 5 नंबर का पॉइंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में एक दूसरे का आदर करना, और दूसरा क्या है, एप्रिसिएशन, जो हम पहले क्लास से बोलते आ रहे हैं, प्रशंसा। एक दूसरे का आदर और एक दूसरे की प्रशंसा आवश्यक है। हम इसकी उसकी तो कई बार प्रशंसा करते हैं, हमारे घर में के लोग ही नहीं करते तो वो भी हमारी हिपोक्रेसी, वो भी हमारा डबल स्टैंडर्ड वाला नेचर है, हम झूठे हैं मतलब क्या हमारा लाइफ पार्टनर एक बार भी ऐसा काम नहीं किया होगा जो प्रशंसनीय होगा? एक भी काम नहीं किया होगा, एक भी बात उसमें ऐसी नहीं जो प्रशंसनीय नहीं है, प्रबंध करते नहीं। सो हम जिसकी प्रशंसा करते हैं वो किसी हमारे अटैचमेंट के कारण करते हैं। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, ये तो वैष्णव का मूल सिद्धांत, मूल स्वभाव है, भक्तों का ये मूल स्वभाव है क्या, दूसरों का आदर करना और उसकी प्रशंसा करना, उसके अच्छे कार्यों की। ऐसा नहीं कि प्रशंसा मतलब सुबह से उठ के रात तक आरती निकालते रहो, ऐसा नहीं, जो किया है उसकी प्रशंसा, वास्तव में जो किया है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वो भक्त का गुण है। जब दोनों इस एक दूसरे को इस प्रकार से आदर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे स्ट्रांग लविंग रिलेशनशिप डेवलप होता है, दोनों के बीच में प्रेममय संबंध एकदम मजबूत हो जाता है। स्ट्रांग लविंग रिलेशनशिप डेवलप होता है। किससे? किससे? रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, आदर और प्रशंसा। हम लोग ऐसा सोचे कि ओपनली भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा पहाड़ मतलब वैसे हिमालय पे चढ़ने वाला काम नहीं है वो। ओपनली भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत क्या होती है? बड़े बड़े काम तो हम बड़े चैलेंज लेके करते हैं ओपनली। छोटी सी बात ओपनली अप्रिशिएट नहीं करते, उसमें संकोच क्यों आता है? मन में संकोच आता है, कैसे पत्नी की प्रशंसा करो यार, जाने दो, वो क्या हो जाएगा, सर पर चढ़ जाएगी। ऐसा सारे पतियों को एक ये एकदम फालतू का डाउट रहता है। पत्नी यदि ऐसी सोचे खाए के लिए इनके लिए रोज खाना बनाओ, सर पे बैठ जाएगा। हर पति को ये एकदम गलत फहमी होती है कि एक बार भी अप्रिशिएट किया तो वो गया काम से। बहुत गलत बात है। इसके कारण लविंग रिलेशनशिप कभी डेवलप नहीं होती। मास्टर एंड स्लेव, एक मास्टर एक स्वामी एक सेवक, ऐसा ही भाव रहता है। और पारिवारिक जीवन कभी आनंद में नहीं, यू कैन नेवर एंजॉय फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन एंजॉय नहीं कर सकते। सो यदि ऐसा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होगा? स्ट्रांग लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप हो जाएगी। केयरिंग, एक दूसरे की केयर करने की आदत पड़ जाएगी, एक दूसरे के साथ प्रेम करने की आदत पड़ जाएगी। इस प्रकार से रिलेशनशिप डेवलप होगा। छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, संकोच करने की भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि आलस्य के बाद सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु कौन सा है? संकोच। संकोच सबसे बड़ा शत्रु यही है, संकोच करता है। कभी कभी मन में लगता है, आता है, पता भी है कि ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, पर एप्रिशिएशन करने के लिए जबान भारी हो जाती है, शब्द निकल नहीं पाता है मुख में से, हेवी हो जाती है वाणी। क्यों? संकोच। क्या संकोच कर रहे हैं? दोनों ने एक दूसरे के लिए जीवन अर्पण कर दिया है, अभी संकोच कहां रहा है? कितनी सारी चीजें दे दिया है आपने मैरिड लाइफ के लिए, छोड़ दिया, दे दिया, पति ने पत्नी के लिए, पत्नी ने पति के लिए, अभी क्या है उसमें संकोच क्यों कर रहे हैं? एप्रिशिएट करने में संकोच और भय, गलत बात है, छोड़ दीजिए उसको। कभी कभी रूटीन जो काम होता है उसमें भी आप एप्रिशिएट कीजिए, रोज का काम है, कभी उसमें भी कभी एक आध बार अच्छा हो और उसमें भी अच्छा हो गया तो एक आध बार एप्रिशिएट कर सकते हैं दोनों एक दूसरे को। और उससे क्या होगा? एक मराठी में कहावत है अति परिचयात अवज्ञा, और एक कहावत है अति तेथे माती, अर्थात जो फैमिलैरिटी जो है ना, फैमिलैरिटी लीड्स टू, फैमिलैरिटी मतलब अति परिचय, वो ज्यादा फैमिलैरिटी हो जाती है ना तो वो क्या हो जाता है? निग्लेक्ट हो जाता है व्यक्ति, और रिलेशनशिप में क्या हो जाता है? निग्लिजेंस आ जाता है, और रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय भी हो सकती है रिलेशनशिप का। क्योंकि क्या है, क्या है रोज रोज का तो है, क्या है रोज का रूटीन, रूटीन रूटीन लाइफ हो गया। सुबह उठो, बच्चों का करो, ऑफिस में जाते दवा करो, टिफिन बनाओ, 12 बजे वो होता है, बर्तन धो, काम वाले आते हैं उनका सोचो, 5 बजे बच्चा, 4 बजे बच्चे आते हैं, 7 बजे पति आ जाते हैं, रात के खाने का करो, बस रूटीन लाइफ, फैमिलियरिटी वही रोज हो रहा है। रोज है, रोज आप दाल राइस खाओ, रोज केवल दाल राइस, रोज कितने दिन खा सकते हो? 4-5 दिन खा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन क्या बोलोगे? मुझे भूख ही नहीं है, मुझे दाल राइस। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, कुछ कुछ लोग जीवन भर दाल राइस ही खाते हैं, वो उदाहरण नहीं है, लेकिन एक ही चीज आप यदि खाते हो रोज तो आपके मन में ये भाव आएगा 5-6 दिन की आज मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, बस हो गया, नहीं चाहिए। ऐसे ही फैमिलैरिटी, पति पत्नी वही बात, वही लाइफ, सब वही, कहीं नहीं चाहिए, चलो 4-5 दिन छोड़ के कहीं चले जाते, 8-10 दिन महीना भर कहीं चले जाते, इतना इरिटेशन बढ़ जाता, ओवर फैमिलैरिटीज हो जाती है। परंतु यदि कोई अप्रिशिएट करता है, छोटी छोटी बातों में भी अप्रिशिएट करता है, तो पति और पत्नी के बीच में क्लोजनेस बढ़ती है, क्लोजनेस बढ़ती है, और करीब आते हैं, और करीब आने से क्या हो जाता है, ये जो ओवर फैमिलैरिटी है, ये जो बहुत ज्यादा रोज 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 का इरिटेशन हो गया स्टीरियोटाइप लाइफस्टाइल का, वो खत्म हो जाता है, वो नहीं आता है, वो नहीं रहता है। किससे? आप सबका ध्यान है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, स्टैच्यूज के साथ पुतलों के साथ तो नहीं बोल रहा हूं ना। अच्छा 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 एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट से क्या होता है? लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप बढ़ता है, उसका फल क्या मिलता है? हैप्पी होता है। जो ओवर फैमिलैरिटी है, कभी कभी जो ओवर फैमिलैरिटी होती है ना, कि रोज रोज का वही चेहरा देखना, वही सब करना, वही सब काम धाम करना, उससे व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। तो ये इरिटेशन नहीं होता है लाइफ में, एक दूसरे के प्रति इरिटेशन नहीं होता है, निग्लेक्ट का भाव नहीं होता है ना। और एक केवल उसमें परहेज रखना है, जो मैंने पहले भी बोला है, डू नॉट टेक ग्रांटेड किसी भी पति पत्नी को या पत्नी पति को, क्या, डू नॉट टेक योर स्पाउस फॉर ग्रांटेड। अपने पति को ऐसा ग्रांटेड मत ले, ये तो वो कर लेंगे, वो तो ऐसे ही वो सब कर लेंगे, या पत्नी ने भी नहीं क्या है वो सब, ये बोल दो वो सब कर लेगी, ऐसे डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जस्ट बात करो ना पहले, कुछ भी करने के पहले बात करो, राइट। सेलिब्रेट योर डिवोशनल सर्विस विथ योर पार्टनर, बहुत सुंदर बात बताई गई हमारे सदाचार में, सदाचार में आती है बात, नहीं उसी में चल रहा है। सेलिब्रेट डिवोशनल सर्विस विथ योर पार्टनर, डिवोशनल सर्विस में भी आप है तो कई भक्तों का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है, अरे क्या है 64 राउंड का कई प्रोग्राम, नहीं 6:30 5 बजे उठ के जिनको लिया, पत्नी वो वाइफ उसका यार सब ऐसे ही रहता है, जल्दी होता नहीं, जल्दी करते नहीं है, मैं अपने आके अपना कर लिया सुबह उठ के मैंने अपना कर लिया, ओ वाइफ का वो जाने का क्या है उसका, इट्स वेरी बैड। डिवोशनल सर्विस को दोनों ने सेलिब्रेट करना चाहिए, और विशेषकर पत्नी ने जो डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में, सेवा में जो भी योगदान दिया है ना, उसका तो इतनी प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत प्रशंसा करनी चाहिए उसकी। यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में सहयोग कर रही है और आध्यात्मिक सेवा कुछ कर रही है, तो वो पत्नी की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं। नहीं नहीं, मैं पूरी बात शास्त्र की कही, प्रभु जी को कुछ गलत फहमी हुई, प्रभु जी को कुछ गलत फहमी हुई, पर मैंने मैंने जो भी बोला मैं अपने मन से नहीं बोला, मैं पहले ही बोला,
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखी हुई है क्या,
वो आपको डिसाइड करना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सारी बातें शास्त्र की है। आपको यदि वो समय देंगे, भगवद गीता का क्लास 1-1.5 महीना यदि बंद करे और हम ये सब करें, तो वो एक एक कोट आपको मिल जाएगा, एक एक कोट। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद द्वारका लीला, श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद कर्दम मुनिदेव होती 3रा स्कंद कर्दम देव होती संवाद, अध्याय के अध्याय है उसमें, वो पढ़िए। शिल प्रभुपाद जी के सैकड़ों इंस्ट्रक्शन है मैरिड लाइफ के लिए, आप प्रभुपाद डायरी पढ़िए, शिल प्रभुपाद डायरी, प्रभुपाद जी ने गृहस्थों को लिखे हुए लेटर्स। अभी मैं इतना सब पढ़ पढ़ के आपको बोलूँ तो 4-5 महीना लग जाएगा, सो मैंने उसको कंसाइज करके अपने जीवन के लिए जो एप्लीकेबल है वो किया है, इसलिए ऐसा मत समझिए कि मैंने अपने जेब में से पुड़िया खोली है, ये शास्त्रोक्त है सब मैं वो काम करी, महाराज के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। आप हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज का कोई भी किताब उठाइए, उसको खोलिए, उन्होंने जो भी कुछ लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में उसका रेफरेंस दिया है, ये शास, ये कोट, ये कोट, शिल प्रभुपाल, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे हजारों कोट्स हैं उनके बुक्स में, फुल ऑफ कोटेशंस। और फिर वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो उनका एक्सप्लेनेशन जरूर होता है, लेकिन आधार तुरंत बताते हैं कि आधार सपोर्ट फ्रॉम परपोर्ट, शिल प्रभुपाद परपोर्ट, वही स्टाइल हमारे इसमें है कि हमने आधार शास्त्र का ही लिया है, उसको केवल हमको समझ में आए, ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज जो सीधी मगज में उतर के उतर जाए उसमें बताया है। सो सेलिब्रेट डिवोशनल सर्विस विथ योर पार्टनर, रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन, Srila Prabhupada ji said about mutual respect and appreciation. Srila Prabhupada ji kya kehte hai mutual respect or appreciation ke vishay mein? Wo kehte, suppose you love somebody. Aisa sochiye ki aap kisi se prem karte hain. You always take from him or her and you never give. Is it a love? Srila Prabhupada prashna puch rahe. And do you think it is good? Aisa Prabhupada ji puchte. Do you think it is good? Kisi se aap prem karte hain aur usse lete hi ja rahe, lete hi ja rahe. Don't give. Dete kuch bhi nahi hai. Do you think it is love? So, no. It is not good. Prabhupada ji kehte. And that is not love. That is exploitation. Exploit कर रहे हैं हम एक दूसरे को, अत्याचार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. So love means you must take and you must give. आप सेवा ले रहे हो पत्नी से तो पत्नी को सेवा दो भी, अर्थात जो आप ले रहे हो अपेक्षा कर रहे हो उनकी अपेक्षाओं को भी पूरे उतरो और अपनी अपेक्षा भी पूरी कर लो. ठीक, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं. ये प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे दिया हुआ लेक्चर है न्यूयॉर्क में. 9.2 से फाज 9.2-5 तीन श्लोकों के मतितार्थ में बताया. When you are not feeling love, अब ये समस्या है. आपको जब प्रेम का भाव ही नहीं क्रिएट हो रहा है, not feeling like love, तब क्या करेंगे? जैसे मान लो आप गाड़ी, गैस की गाड़ी है, गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी बंद पड़ गई, आप क्या करेंगे? धक्का मारेंगे थोड़ी, चलो गैस भरेंगे ना, उसमें गैस भरेंगे, राइट? इट्स जस्ट लाइक फिलिंग अ गैस इन कार. प्रेम नहीं भाव हो रहा है, प्रेम भाव प्रकट ही नहीं हो रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है प्रेम के जैसा. गाड़ी चल ही नहीं रही है, इट मीन्स गाड़ी में गैस नहीं है. प्रेम भाव हो ही नहीं रहा, इट मीन्स व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लव, इट इज अ सिग्नल टू फील योर लाइफ विथ मोर गैस. इसका अर्थ है कि आपके जीवन में आपको गैस की आवश्यकता है. कौन से गैस की? केयरिंग, गिविंग, सेक्रीफाइस, ये गैस की आवश्यकता. कौन से गैस की आवश्यकता है? आपके जीवन में आपको ज्यादा एक दूसरे की केयर करने की आवश्यकता है. यदि आपको प्रेम भाव नहीं उमड़ रहा है पति पत्नी के बीच में, तो पहला पॉइंट है कि आपको गैस भरना है. गैस अर्थात आपको एक दूसरे की केयर करना है. केयरिंग कम हो रहा है, केयरिंग डेफिनेटली कम हो रहा है, इसलिए प्रेम भाव नहीं उत्पन्न नहीं हो रहा है. केयरिंग का भाव होना चाहिए, गिविंग का भाव होना चाहिए. गिविंग का, गिविंग रूपी गैस, देने रूप, देना देना है. पति पत्नी के लिए कुछ करना है, पति के लिए कुछ करना है, कुछ देना है, तो देना रूपी गैस या पेट्रोल भरना है अपनी कार में, तभी ये वैवाहिक जीवन की कार चलेगी और मन में, हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा. अन्यथा प्रेम नहीं होगा उत्पन्न, अन्यथा देयर विल बी नो लव. सो इवन just one of you making an attempt to act lovingly will improve the situation. दो में से एक भी इस प्रकार से कुछ अपने बर्ताव में परिवर्तन करता है, एक भी, दो में से एक भी, तो भी पूरी सिचुएशन बदल सकती है. दोनों करते हैं तो हम खास 100% परिस्थिति बदल जाएगी. कोई एक करता है तो नहीं बदलेगी. वो थोड़ा बहुत परिणाम हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, परंतु दोनों करते हैं तो बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा. अभी वही प्रश्न मैं फिर से पूछ रहा हूं. हाउ फ्रिक्वेंटली यू एंड योर स्पाउस लाफ टुगेदर. आप और आपकी पत्नी बैठ के कितनी बार एक साथ हंसते हैं? डेली एक या दो बार, हफ्ते में एक या दो बार, एक से भी कम बार हफ्ते में, या कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, इनफ्रिक्वेंसी है, या कोई कोई महाशय है वो कहेंगे कि हमको तो याद भी नहीं लास्ट कब हंसे थे. आई डोंट रिमेम्बर लास्ट हम दोनों एक साथ बैठ के कब हंसे। सोचिए अपना जीवन कहां जा रहा है प्रभु जी, मैरिड लाइफ कहां जा रहा है, सब बिजी है, सब सक्सेसफुल है, नो डाउट अबाउट इट, बट मैरिड लाइफ कहां जा रहा है, वैवाहिक जीवन कहां जा रहा है, जरा याद तो कीजिए, इस पॉइंट को आओ वास्तव में याद कीजिए, रियली रियली सीरियस पॉइंट। और यदि ये नहीं है ना तो ऐसे भी मत हंसी, अर्थात दूसरों के साथ जो हमारी हंसी है बाह्य जगत में जो हम हंसते हैं ना वो फेक फेक है, उसमें बड़ा स्वार्थ भरा हुआ है वो हंसी में। कितनी बार सोचिए, प्रश्न पूछिए, मैं सबको पूछ रहा हूं, कितनी बार पति और पत्नी मिलके हंसते हैं एक साथ, दिन में एक बार तो भी नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, महीने में एक बार कोई नहीं है, महीने में भी एक बार कोई हंसा नहीं है साथ में बैठ के पति और पत्नी, दो महीने में एक बार कोई हंसा है साथ में, याद ही नहीं है प्रभु जी, सी द सिचुएशन, याद ही नहीं है हमको कि हम दोनों साथ में बैठ के घर में अपने बहुत हंसे, लाफ टुगेदर, डोंट रिमेम्बर इवन। देखिए कहां जा रहा है हमारा मैरिड लाइफ, हम एक दूसरे का केवल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हम मटेरियल में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, हम एक्सटर्नल जो बाहर के लोग या बाहर के विषय या बाहर के एलिमेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, कैसे सुख मिलेगा, कैसे मैरिड लाइफ हैप्पी होगा, समस्या क्यों नहीं आएगी मैरिड लाइफ में, मैरिड लाइफ में समस्या क्यों नहीं आएगी, आएगी ही आएगी, हमने कभी प्रयत्न नहीं किया, साथ में कभी बैठे नहीं, कभी हंसे नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा उद्देश्य आपको आईना दिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आप बदल जाइए, हम बदल जाते हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं, बदल जाइए, जो भी मन में अभी हमने जो कहा, मन के ऊपर जो पगड़ी बैठी हुई है ना कि स्त्री के विषय में या पुरुष के विषय में या वैवाहिक जीवन के विषय में, मैरिड लाइफ के विषय में, वो निकाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही खाई में डूब जाएंगे हम वो नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही खाई में गिर जाएंगे बुरी तरह से। तो हम मैरिड लाइफ में है, हमने विवाह किया है हम सांसारिक जीवन में है, भूल गए सब भूल गए, एक्सप्लॉयटेशन में है, ये याद है। सो इस बात को बहुत जल्दी से जल्दी इमीडिएटली अभी इसी क्षण से बदल दीजिए, कुछ ऐसी बातें कीजिए कि दोनों को एक साथ हंसी आए, दोनों साथ साथ हंसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आधा घंटा लूंगा पर आज तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि क्या है आपके गृहस्थ धर्म की ये परीक्षा है, आपको टॉलरेट करने की आदत हो जानी चाहिए, टॉलरेंस नहीं है इसीलिए वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हैं, है कि नहीं, इसी ही कारण है, टॉलरेंस नहीं है, अनएक्सपेक्टेड बात हो जाती है तो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं होगा वो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि अप्लाई तो कोई कर नहीं रहा है बल्कि भूलते जा रहे हैं, तो मेरा एक्सटेंशन करने का पर्पज ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इससे से क्यों ना मैं फिनिश कर दूं क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टिंग माय टाइम, इट्स वेरी वैल्यूएबल टाइम, व्हाई शुड आई वेस्ट, मेरे को ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी सेवा है, मैं वो छोड़ के आप सबके लिए बना के नोट बना के आपको बताऊं, और इफ यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, नॉट ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आई वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजी, मैं ये पॉइंट इसीलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि मैंने भी बड़े मुश्किल से अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, और मुझे भी अपने गुरु परंपरा में गुरु महाराज ने ऐसे करने के लिए बोला है, और मैं वही बात ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आई डोंट वॉन्ट आइडली सुनो टाइम कैसे जा रहा है, डेढ़ बज गया, बस हो गया, चलो, आई डोंट वॉन्ट दैट, क्यों वेस्ट करूँ मैं टाइम। कल आज शाम को 6:30 बजे मुझे एक फोन आएगा, उस पर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने आज क्या किया, और मैं उनको कहूंगा कि मैंने आज इस विषय पे महाराज प्रवचन किया, तो महाराज पूछेंगे मुझे क्या उसका आउटकम क्या आया, उससे अच्छा ट्रांसलेशन के 10 पेज होते थे। तो आप सोचिए कि मैं जो कर रहा हूं मेरा बड़प्पन नहीं है, मैं जो कर रहा हूं किसी बहुत बड़े उच्च कोटि के प्रभुपाद जी के शिष्य की सेवा को दूर रख के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और मेरी तन्मयता यह है कि इसमें से कुछ पॉइंट जीवन में उतर जाए। ऐसे ही हमारे गुरु परंपरा में गुरु महाराज ने इतनी तन्मयता से, बल्कि इससे ज्यादा, रात को 12-12 एक-एक बजे तक ये पॉइंट हमको समझाए, और हम बिल्कुल यस महाराज एकदम परफेक्ट। कल ही मैं प्रयास करता हूं 2 पॉइंट का इसमें के, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वो हमारे परंपरा में जो आचार्य बताते हैं वो कितने तन्मय की, वो खुद 12-12 बजे तक जगते हैं इसके लिए, जबकि उनका शेड्यूल होता है 8:30-9 बजे सोते हैं, रात को 2 बजे उठते हैं। मैं भी बिगड़ा हुआ ही था,
इनको सुधारने में थोड़ा टाइम
लगेगा। मैं थोड़ी ना बोला कि आज कल आप सब सुधर जाओ, ये बोला है मैंने। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप सिंसियरिटी दिखाओ मुझे कि आपने ये पॉइंट सीखे, इसमें से 2 पॉइंट 4 पॉइंट अच्छे लगे, ये कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे करूंगा। मैं थोड़ी ना, मैं तो मैं भी समझ सकता हूँ कि तूप खाते से रूप नहीं आता। मुझे बुरा किसी से नहीं लगा, क्योंकि ये विषय बहुत सीरियस है, ये विषय में समय बहुत गया है मेरा। आप क्वेश्चन बहुत करो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं भगवद गीता में आपको कभी नहीं बोला विषय, परंतु इसमें मैं बोल रहा हूँ। भगवद गीता में मैंने बोला, उससे में तो आपने कई कई प्रश्न पूछे, उसमें कुछ नहीं बोला। देखिए क्या है, मैंने 5 क्लास का रिवीजन किया, कितने पॉइंट याद होते हैं, कुछ नहीं याद होते हैं। कुछ याद नहीं रहा, सो कोई भी टीचर को तो गुस्सा आएगा ना। लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई भी टीचर है उसको गुस्सा आएगा कि टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को हेवी तो नहीं जा रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ये सब आइडियल है मेरे लिए नहीं है, ऐसे तो नहीं लग रहा है ये सब। वो मराठी में कहते हैं पुराणातली वांगी पुराणात, मतलब पुराणों की बात है, पुराण में रखो, हमको मत बोलो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो उसको उसमें इंटरेस्ट है। मैं भगवद गीता में, आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे कोई प्रश्न से, मुझे प्रश्न से आप यदि 1000 प्रश्न पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट पहले 2 क्लास में प्रश्न ही ज्यादा हुए, आपको ध्यान होगा तो, पहले 2 क्लास में क्या हुआ, प्रश्न ही हुए ना पूरा टाइम, 45 मिनट्स तक प्रश्न चले 2 क्लास में। प्रश्न से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग में बहुत स्लो हो रहे हैं। गृहस्थ धर्म टॉपिक ही आप ही की वजह से लिया है, मैंने नहीं डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड किया था, आप लोगों ने कहा है। देखो अभी आप लोग उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट है, वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है, भगवान की सेवा में का टाइम है। हाँ मौका भी बहुत अच्छा था। एनीवे ठीक है, मैं फिर भी 2-3 पॉइंट तो लेता ही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा चलो अभी तक क्या समझे वो बताइए, अभी मैं आगे का पॉइंट नहीं लेता हूँ। 6 पॉइंट हुए अभी तक, हाँ 5वें छठवा चल रहा है। एनीवे अभी तक क्या समझे वो बताइए। अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बताइए सब सब कुछ ना कुछ बोलिए, सब सब प्रभु जी माता जी जो सब कुछ ना कुछ बोलिए। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए सभी सभी में। ध्यान से सुनो और प्रेम से बोलो, ये बहुत महत्व की बात है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए एक दूसरे के प्रति। बातचीत करो, एक दूसरे को कंसल्ट करना चाहिए। भक्तों को घर में प्रसाद पे बुलाना हो तो पत्नी को पहले पूछो। वैसे और सभी होना चाहिए, यदि किसी माता जी को कुछ घर में प्रोग्राम करना है तो प्रभु जी अवेलेबल है कि नहीं वो पूछो। हाँ प्रेम से बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, पूछ के करना चाहिए। एक फोर्स होता है उसमें, वो फोर्स क्या है, हम हमारे वैवाहिक जीवन में वो कौन सा फोर्स है जीवन प्रवाह को जो आगे ले जाता है, सारे दिक्कतों के ऊपर मात कर देता है, लेकिन नदी के जैसा अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, उससे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी होने दो वो पार हो जाएगी। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेशन है, तो कितना भी बड़ी समस्या परिवार में आने दो पार हो जाएगी। लीडरशिप डिसाइड करनी चाहिए। सेलिब्रेट डिवोशनल सर्विस ऑफ योर स्पाउस, आपके पति की या पत्नी की जो भी आध्यात्मिक सेवा वो कर रहे हैं उसके प्रति उनका अप्रिशिएट करो, उसको सेलिब्रेट करो घर में दोनों ही। सेलिब्रेट करो मतलब वही पति या पत्नी में कोई बहुत अच्छी सर्विस में, सेवा में है, भगवत सेवा में है, डिवोशनल सर्विस में है, तो घर में बैठ के सेलिब्रेट करो, मतलब उनके साथ चर्चा करो उसके ऊपर, उनको जो अच्छा लगता है उस विषय पे चर्चा करो, उनसे बातचीत करो, खूब हंसो, खूब अप्रिशिएट करो, क्योंकि शी इज़ और ही इज़ इन डिवोशनल सर्विस, वो सेलिब्रेट करो इस टाइप से। सेलिब्रेट करो मतलब पार्टी करो ऐसे नहीं, दोनों खुशी से एक दूसरे से एक्सचेंज करो उसको। बनाना नहीं, कंसल्ट करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए एक दूसरे। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। प्रेज इन पब्लिक, चेस्टाइज इन प्राइवेट, बट दैट टू डिपेंड्स ऑन
जो खाने पीने का टेस्ट होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि माता जी अपने हिसाब से बनाए, तो आपने कहा इसका उल्टा भी होना चाहिए,
उल्टा भी होना चाहिए।
माता जी को पसंद है
वो भी प्रभु जी बनाए, यस एटलीस्ट सोचे कि चलो उनके लिए भी थोड़ा वो पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट
बोल दिया अपना बात
इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं ऐसा ही चाहिए मुझे, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, अपनी ही बात बोलनी है मुझे, इसमें से लिखी हुई बात आप सब अच्छे याद करके बोलेंगे तो मैं ये भी जज कर सकता हूँ कि जो बोल रहे हो उसको शायद वो आप वो पॉइंट बोल रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो संस्कार करके आए वो पॉइंट, इसलिए कुछ बोली है। हाँ लेकिन बहुत सारे पॉइंट है ही नहीं है, वो विपरीत है, इनफैक्ट उल्टा है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए, खाने पीने में बहुत अंडरस्टैंडिंग, आपको 50 साल में ये भी पता हो जाता है कि इसको क्या अच्छा लगता है और किसको क्या अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वो पता हो जाता है, इसलिए कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन पर भी हमने बोला था उसमें, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके हिसाब से नहीं बनाना है या इनको भी अपने हिसाब से नहीं सोचना है। मान लो आपने बना दिया तो प्रभु जी को ये सोचना है कि आपको अच्छा लगता है ना, ठीक है बहुत अच्छा है, और जब उल्टा है, जब इनके हिसाब से बनता है या ये और उल्टा करते हैं, तो इन्होंने भी अपने हिसाब से नहीं बनाना है, इन्होंने भी आपके हिसाब से कभी कभार एक हर डिश बनाया, तो वो ये सोच के बना कि पत्नी को क्या अच्छा लगता है चलो मैं वो बनाता हूँ। यदि आपने बनाया है और उन्हें खाया नहीं, सिंपल बात मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, ऐसा कभी कभी होता है कि आपने बड़े प्रेम से ऐसे भी इसमें से बनाया, लेकिन इसमें भाव ये मैं पहली वही पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपने बनाया है बनाते वक्त आपने क्या सोच के बनाया नहीं, अभी आपको उनका पता है ना कि इनको क्या अच्छा लगता है, उनकी हेल्थ क्या है, वो कौन सी टेस्ट है, मीठा मान लो डायबिटीज है, आपने बहुत बढ़िया बासुंदी बनाई, क्या फायदा, आपको अच्छी लगती है बनाया आपने। कहने का मतलब ये है, देखो कई उसके सॉल्यूशंस भी बहुत है, एक तो पहली बात इतने सारे सालों का हमको अनुभव हुआ है तो पता है कि टेस्ट क्या है, पहली फैक्टर। दूसरे फैक्टर, कोई अच्छी बहुत अच्छी चीज आप बना रहे हो तो एक बार पूछ लो ना बनाने के पहले कि आप मैं ये बनाने जा रही हूँ आपको चलेगा ना,
और अच्छा नहीं लगे तो पूछ भाई और क्या बना दूँ।
हाँ मतलब देखिए मैंने पहले ही बोला था, देखो मैंने एक कंडीशन रखी थी, सुनिए मैंने एक कंडीशन रखी थी, क्या रखी थी पता है, जो भी आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो वो सुनाने के लिए मत बोलिए, आपको किस लिए बोलना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन।
खाना भी बना रहे हैं
तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी की क्या है खुशी,
बात अपोजिट कर रहे हैं लेकिन बात यह है कि हम जैसे प्रसाद भी बन रहा है, मेहनत ही मन में है, हमको पसंद क्या है, हिसाब से बना रहे हैं।
हाँ
फिर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं,
हम सब सुखी, हाँ उनको प्रसाद आना चाहिए, हम सब सुखी होने चाहिए, हमारे घर में मजा आने, सबको आनंद आना चाहिए, कैसे आएगा? आपने तो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे सब किया, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो एक दूसरे का धोखा है। देखिए ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए किस बात इस सारे एपिसोड में किस बात की कमी है, एक सिंगल एक शब्द में बोलिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना आप, आपकी खुशी दूसरे की खुशी ये सब बातों को आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। मुझे अच्छा लगता है मैंने बना लिया, आप पूछ रहे हो आपको अच्छा लगेगा खाओ, मतलब पहले कम्युनिकेशन ही नहीं किया, या फिर पति भी एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेशन की मुझे जो अच्छा लगता है वही रोज पत्नी बनाए, ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है। कभी उनको भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, तीसरा कोई व्यक्ति का उसको भी अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि ठीक है मैं चल खा लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है तुमने अच्छा बनाया, ये चीज तुमको बहुत अच्छी आती है, भले ही मुझे नहीं अच्छी लगी हो लेकिन बनाई बहुत अच्छी है। शाम रात को क्या बोल रहे हैं, स्टीरियोटाइप लाइफ हो जाता है, स्टीरियोटाइप लाइफ। आगे वो आएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इस सब इन सब बातों की शुरुआत कैसे करें और जीवन में उत्साह कैसे लाएं, क्योंकि माता जी का लाइफ भी स्टीरियोटाइप है और प्रभु जी बाहर जाते हैं इसलिए उनका लाइफ बहुत उत्साहवर्धक है, ऐसा भी नहीं है, उनका भी लाइफ स्टीरियोटाइप ही, वो भी कंटाल चुके हैं, सब नहीं चाहिए। बहुत सारे तो लोग ऐसे बोलते हैं कि जितने जल्दी रिटायर हो जाऊंगा अच्छा है, वह सिद्धे से सो, क्योंकि लाइफ वो भी स्टीरियोटाइप है, माता जी का भी लाइफ स्टीरियोटाइप है। इसमें आपको उत्साह डालना है, और हमने जैसे बताया ना कि गाड़ी में गैस भरना है, पेट्रोल भरना है, ऐसे लग रहा है निरुत्साह लग रहा है, उत्साह नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह कि केयरिंग कम हो गई एक दूसरे के प्रति, ये बात पक्की 100% है। प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, स्टीरियोटाइप लाइफ हो गया, घिसी पिटी जीवन शैली हो गई है, इसका सीधा सीधा अर्थ है दोनों के बीच में केयरिंग कम हुआ है। सो फिल अप योर कार, उसको भरिए केयरिंग से, केयर करना शुरू कीजिए एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे की आवश्यकताओं का, एक दूसरे के लाइकिंग के प्रति केयर कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। फिलअप करना होगा जीवन को, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का, वैवाहिक जीवन रूपी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, उसको फिलअप करना पड़ेगा केयरिंग से। नमक देना भूल गया तो हम तो आग बबूला हो जाते हैं, इतना भी समझ में नहीं आता है नमक नहीं रखा है, ये हमारा दोष है।
मगर बहुत अच्छा,
नहीं ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन
बोलना चाहिए।
मैंने एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बताया है जो माता जी ने चार बार बोला, उन्होंने भी बोला, क्या बताइए फिर से? दो पॉइंट कम्युनिकेशन के, लिसन रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग, वो रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग में आता है, नमक डाला नहीं, गलती हुई, आपसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी गलती कई होती है, उनसे गलती है, जानबूझ के आपको नमक नहीं देने के लिए थोड़ी नहीं डाला है। अब आपको आप कैसे मांगना है, रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग ये उसमें आ जाता है सब,
थोड़ा
नमक देना, वो बोलेंगे कि मांगना ही नहीं बोलने, वो ऐसा नहीं है, प्रेम से बोलो, आदत करनी पड़ेगी प्रभु जी, उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने इगोइस्टिक हो चुके हैं कि कभी भी हमने रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग किया नहीं है पहले। हाँ वो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोशिश, जो जितना ज्यादा डिवोटी है उसको तो ज्यादा कठिन है सब, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि जो डिवोटी है वो ये सोचते हैं कि माता जी की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो भगवान की सेवा में लगा हूँ, माता जी क्या है। तो जो डिवोटी है उसको ये बहुत डिफिकल्ट है, माता जी का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टफुली बोलना, वो बोले वो डिवोटी दूसरे माता जी के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बोलेंगे, बहुत सबके साथ अच्छा रिस्पेक्ट करेंगे सब, लेकिन घर के माता जी के साथ आएगी बात तो सब रिस्पेक्ट वगैरह भूल जाते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस, सॉरी टू से, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बोला, आप सुनिए, ये सारे पॉइंट आपको इसलिए बोले हैं कि आपके अंदर से सब कुछ कमियां है, मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर एक कमियां है, इसलिए तो मैंने ये सब बोला है। आप मुझे ये मत बताइए कि क्या क्या कमियां है, कमियां तो मुझे पता ही है, आई नो, वी ऑल नो, शास्त्र नोज, साधु नोज, भगवान नोज, हमारे अंदर सारी कमियां ही कमियां। अभी आपके अंदर कमियां है उसको आप मत गिनाइए, आप क्या करना है, जो ये सब बोले हैं उसमें क्या अप्लाई करना है, आपके पास क्या निगेटिव है वो तो सब पता है, इसमें कितना पॉजिटिव डाल सकते हैं वो सोचिए। बहुत निगेटिव है बट व्हाट यू कैन डू पॉजिटिवली।
केयरिंग वर्ड को थोड़ा इलेबोरेट करिए, क्योंकि क्या है कभी कभी ज्यादा केयरिंग से भी समस्या खड़ी हो जाती है।
नहीं, आप कैसे डिसाइड कर सकते ज्यादा केयरिंग कम केयरिंग?
बहुत केयरिंग,
आपको तो थोड़ी सी केयरिंग भी ज्यादा केयरिंग लगेगी। नो वन कैन डिसाइड केयरिंग। केयरिंग इज एन एटीट्यूड। केयरिंग जो है ना ये एक एटीट्यूड, ये स्वभाव है। केयरिंग इज नॉट अ कोई स्पेशलिटी, इट्स एन एटीट्यूड। एटीट्यूड में उतरना चाहिए, वो मेरे भाव में आना चाहिए केयरिंग। कोई व्यक्ति बैठे ऑफिस में बैठे, कोई व्यक्ति आए उसको पानी नहीं था, पानी पी लो पहले। जैसे इट रिफ्लेक्ट्स एवरीवेयर। आप यदि घर में केयरिंग है ना तो वो एवरीवेयर इट रिफ्लेक्ट्स एवरीवेयर। जीव दया एवरीवेयर, वो पता ही चल जाता है कि आप केयरिंग है कि नहीं है। घर में यदि केयरिंग उस, क्योंकि वो एटीट्यूड स्वभाव है, वो एटीट्यूड बनाई है। मंदिर में हमको सबको बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मंदिर में भी ऐसे सब होता है। केयरिंग हम घर में यदि केयरिंग करते हैं तो मंदिर में जाके जब हम सेवा में रहते हैं तो उस समय भी हम सभी भक्तों का केयर करेंगे। पर हम घर पे ही हमको केयरिंग की आदत नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन की आदत है, मंदिर में भी जाके या समाज के स्तर पे सामाजिक फंक्शंस में भी जाएंगे तो क्या करेंगे? केयरलेस रहेंगे। हमको क्या फर्क पड़ता है, चलने तो चल रहा है, काहे के लिए किसी के लिए कुछ करना है। सो केयरिंग मीन्स दूसरे के मानसिक शारीरिक मानसिक और बौद्धिक स्तर पर केयर करना। शारीरिक स्तर पर केयर करना अर्थात जो कुछ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं या जो कुछ भी दूसरों को जिससे भी कंफर्ट मिलता है वो प्रोवाइड करना, दैट इज शारीरिक फिजिकल केयरिंग। जो कुछ हम कंफर्ट दे सकते हैं फिजिकल लेवल पे वो देना। मानसिक अर्थात इमोशंस, इमोशनल केयरिंग। ये देखिए कि आप ट्रिगर ना खींचे, ट्रिगर खींचने का अवॉइड कीजिए, वो इमोशनल केयरिंग है ना। इंटेलेक्चुअल केयरिंग क्या है? दूसरे व्यक्ति ने यदि कुछ प्लान किया है, डिसाइड किया है और उसके अनुसार कि ऐसा ऐसा करते हैं, थोड़ा चाकर चार माना ज्यादा करते हैं या कोई मंदिर की कुछ सेवा करते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए, ऐसा कुछ उन्होंने किया है तो उसमें इंटेलेक्चुअली भी आप सपोर्ट कीजिए, आप भी उस प्लान में ऐड हो जाइए। दैट इज इंटेलेक्चुअल केयरिंग। सो हमको एक दूसरे की तीनों स्तर पर केयरिंग करना है, फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। फिजिकल स्तर पे ये देखिए कि किसी कोई भी शारीरिक दृष्टिया किसी की भी प्रताड़ना ना हो, कोई प्रताड़ित ना हो। यदि हो रहा है तो हम उस कैसा, हम क्या कारण बन सकते हैं कि इनका ये प्रताड़ना कम हो जाए, हम क्या कर सकते हैं कि इनकी ये जो दुख शारीरिक समस्या है ये कम हो जाए, वो सब कुछ करने की चेष्टा करनी चाहिए, वो प्रयास करना चाहिए, दैट इज केयरिंग। और यदि हम वो घर में वास्तव में करते हैं ना प्रभु जी, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है, हमारे अंदर उतर जाता है। और बोलिए, केवल भौतिक स्तर पे ही केयर करते उसको केयर करते ऐसा नहीं है, आप दूसरे के विचारों का भी रिस्पेक्ट करते आना चाहिए, दूसरे के विचारों का, दूसरे के इमोशंस का रिस्पेक्ट करते आना चाहिए, केयर करते आना चाहिए कि ये किसी का इमोशन को चोट न पहुंचे। कई बार हम सोचते हैं हम तो चार नियम का पालन ही करते हैं, चार नियम करते हैं, 16 माला जप करते हैं, जैसे 4-8 माला जप करते हैं, एकादशी करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं, सब जाते हैं, तो हमको जैसे अधिकार मिल गया कि बाकी जो कोई भी साधु संत ये दूसरे दूसरे संप्रदाय में जो कोई भी है उनको बोलते बैठे, ये क्या है, बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को बोलो ये क्या समझता है, ये तो अज्ञानी है, ये तो बेवकूफ है, मैं तो बहुत होशियार हूँ। सो ये सब दूसरे के इमोशंस और दूसरे के विचारों की हम केयर नहीं करते हैं और अपने ही अंदर के अहंकार को प्रकट करते जाते हैं, क्योंकि हमारा केयरिंग एटीट्यूड नहीं है। So, एक इस पॉइंट पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि किसी भी साधु संत कोई भी संप्रदाय के किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है लेकिन आदरणीय है। हम पूजा नहीं करते उनके, लेकिन उनका आदर करना चाहिए। वो कैसे है कि देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आप सब जानते हैं है ना, भारत में कितने यूनिवर्सिटीज है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उस यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी है, लेकिन इंजीनियरिंग में बेस्ट इज IIT, बरोबर, सब लोग IIT में जाने के लिए करते। सो ये वैष्णव सिद्धांत या वैष्णव संप्रदाय जो है इट्स लाइक एन IIT, और बाकी जो भी कुछ है इट्स लाइक एन अदर यूनिवर्सिटीज़। वो भी इंजीनियर बनते ही और जाते ही और काम करते ही स्किल डेवलप करते हैं. बट वी आर दोज हु फॉलोज वैष्णव एटिकेट्स, जो वैष्णव सदाचार को वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वो IITian मतलब दे नो हायर तत्व इन डिटेल. सो इसलिए किसी दूसरे को हमने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वो हमारा धंधा नहीं है, वो हमारा बिजनेस नहीं है. वो अपने लेवल पे अपने स्तर पे कोई डिग्री ले रहे हैं, लेने दो, डोंट बॉदर, डोंट क्रिटिसाइज. उनके इमोशनल, उनके इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके भी इमोशंस का केयर करना चाहिए. ठीक है, जाने. एक विषय आया इसलिए बोला, ये विषय के बाहर की बात है. और बोलिए क्या करेंगे, ये बोलिए क्या समस्या है, वो तो सब जानते हैं. अभी मैं आपको प्रैक्टिकल ही बात बताता हूँ. जितने पॉइंट्स हमने बोले हैं उसमें से कौन से पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, वो पॉइंट अप्लाई करके देखिए. आई विल नॉट गिव एनी थियोरेटिकल सोल्यूशन. नो, अभी मैं आपको, आप वो करके देखिए. नहीं अभी तक नहीं, आप अभी से करके देखिए उसको, जो पॉइंट है वो आप करके देखिए, फिर मुझे प्रश्न पूछिए. क्योंकि क्या है, बाकी सब थ्योरी, ये जो है ये एक्चुअल प्रैक्टिकल, खाने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये डाइजेस्ट होता है कि नहीं डाइजेस्ट होता है, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स है कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो अपने लिए हानिकारक है कि उपयुक्त है. सो कीजिए कीजिए कीजिए, डू इट डू इट. मैंने एक शब्द कल बहुत महत्वपूर्ण बताया था, कौन सा, दो शब्द बोले थे और एक बहुत खराब शब्द और एक बहुत अच्छा शब्द है. एक शब्द बहुत बेकार है और एक शब्द बहुत अच्छा. प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा, हाँ, when, if this happens tomorrow in my family, if my husband says this, if my wife says this, if my kid says this, if this doesn't happen, if ये हुआ, if वो हो गया, if ऐसे हुआ, if वैसे हुआ, if. प्रभुपाद said it's very third class word. पावरफुल वर्ड कौन सा है, कौन सा है, when I will do it, when I will follow it, when I will apply it. वेरी पावरफुल वर्ड. डू इट डू इट डू इट. समस्याएं हजारों है, मतलब ये तो आपने शायद मुझे एक ही प्रॉब्लम बताया, मैं समझता हूँ और बहुत प्रॉब्लम है हर एक के लाइफ में, हर एक के पास प्रॉब्लम का भंडार, हम उसके ऊपर ही बैठे हुए. सो डोंट बॉदर अबाउट ऑल इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल थिंग्स और प्रॉब्लम्स. स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट इट, स्टार्ट इट, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं. स्टार्ट डूइंग देन डिस्कशन. पहले डिस्कस डिस्कस डिस्कस, इट्स नॉट द वे. ये क्या है, कुक बुक के जैसा है, कुकिंग बुक, कुकिंग का बुक होता है ना, वहाँ कॉन्टिनेंटल डिशेज का वर्णन रहता है उसमें, खूब पढ़ लिया रोज उसके ऊपर, ये लेकिन ये ऐसा, ये कैसे वैसा किया, तो पहले तेल डाला तो मोरी जलेगी, मोरी राई डाला तो जीरा जलेगा, नहीं जीरा डालो तो ऐसा करो, अरे बहुत अभी समझ में आया, हाँ अभी क्या, चलो डिस्कस करते हैं. किया डिस्कस, किया डिस्कस, किया डिस्कस, महीना भर से कुक बुक डिस्कस कर रहे हैं. टेस्ट आएगा किसी को, कोई फायदा नहीं डिस्कशन का. उससे अच्छा तो मैंने आपके साथ महीना भर डिस्कस नहीं किया, मैंने बुक खोला, सामने रखा, एक एक चीज देख के उसमें डाला, बनाया और खाया. हु इज हैप्पी? आपने एक महीने में पूरा रिसर्च किया कुक बुक का, बहुत स्टडी किया, सब मुखोद्गत हो गया. और मैंने क्या किया, एक भी चीज याद नहीं किया उसमें कि गया, सीधा खोला, चीजें डाली, इमीडिएट बनाया और खाया. हु इज हैप्पी? ये कुक बुक है, ये बना के खाओ पहले. ये जो बोला है इसको पकाओ, बनाओ, खाओ, अर्थात अप्लाई करो, देन सब कुछ होगा. नहीं, और बोलिए.
हरे
हरे कृष्ण. और बोलिए. प्रभुपाद सेड दिस, ही डिफाइंड मिजरेबल, मिजरेबल लाइफ. मिजरेबल लाइफ की डेफिनेशन जो प्रभुपाद जी ने की, व्हेन देयर इज नो कृष्णा मींस मिजरेबल, इफ कृष्णा इज देयर इन फैमिली लाइफ मींस हैप्पीनेस. और हो गया पूरा क्लास. आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस पॉइंट्स. जो आगे के पांच छह पॉइंट है मैं उस पर, आई वॉन्ट एप्लीकेशन. मुझे करते वक्त वास्तव में आधे से ज्यादा हमारे अनर्थ गल जाते हैं. मैं ऐसा ही सोच रहा था एग्जैक्टली जब आप सोच रहे हैं, परंतु मुझे किस दिव्यत्व से जाना पड़ा. मैं यदि बोलूंगा तो आप सोचेंगे आपको बहुत अहंकार हो गया आपकी बातों पर, आप बोल रहे बार बार, बहुत सुनना पड़ा. स्ट्रिक्टली ये बताऊंगा कि इसको करो, इसको करो. आप सभी भक्तों के सौभाग्य से ये सब कुछ मुझे जिसने सिखाया, हमारे गुरु महाराज, उन्हें एक एक पॉइंट पे हमको इस प्रकार से सिखाया, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो, अप्लाई दिस, अप्लाई, डोंट टॉक, डोंट टेल मी थेरीज, अप्लाई, अप्लाई. बड़ी सीरियसली आके दो तीन पॉइंट को रट लेता था, अभी इसको कहां अप्लाई. आई यूज टू फाइंड द चांस टू अप्लाई, मैं ये पॉइंट को कहां अप्लाई करूं अभी, कहां मुझे कल के कल अप्लाई करना है और कल के कल रिजल्ट निकालना है और कल के कल महाराज को बताना है. इतना था, इतना होता था प्रभु जी. बिकॉज हम इतने आलसी है और हमारे अंदर, हम सबके अंदर अहंकार भी बहुत है ना, कि हम जब तक कोई प्रेशराइज नहीं करेगा हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है हम जो कर रहे हैं वो सही है. ये बिना प्रेशर से इसमें से एक भी पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं इसका. इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. ये हमारी परंपरा नहीं सीखी, प्रभुपाद महाराज भी इसके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट. So strict means transformation, nothing else. Strict होना अर्थात क्या, transformation की ओर बढ़ना. बहुत गहन विषय है, बहुत important विषय है, बहुत ही आवश्यक विषय है, है कि नहीं, बरोबर ना. तो जी शास्त्र में विवाह करने के पहले क्या करना चाहिए, इसका इतना सुंदर वर्णन है संस्कार में, 16 संस्कार में. हमने हम सभी ने जो विवाह किए हैं उसके पहले उन सभी बातों का कभी विचार नहीं किया है. सो अभी विचार करें, एटलीस्ट अभी विचार करें. संस्कार था शुद्धिकरण, वो कुछ नहीं हुआ है हमारा विवाह के पहले, किसी का भी नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं हुआ है. इसलिए अभी ज्यादा सफरिंग, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा डिस्ट्रक्शन, ज्यादा डिस्ट्रेस, ये सब जो आएगा उसको थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं. अभी तो शुरुआत करें, नहीं अभी तो शुरुआत करें, अभी नहीं तो कब. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय. आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा और उससे भी ज्यादा मेरी होप ये है कि आप कुछ तो अप्लाई करेंगे. आशीर्वाद नहीं, मेरी बहुत हृदय से प्रार्थना है, पूरी हृदय से प्रार्थना है कि इस क्लास में सारे के सारे बहुत अच्छे गृहस्थ एग्जाम्पल बन जाए दूसरे के लिए, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए कि देखिए कैसे गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं. ये मेरी प्रार्थना है हृदय से, और आप मेरी प्रार्थना का स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन यापन करें, है ना. बिल्कुल जोर से प्रयास कीजिए.
इस विषय पर अधिक चर्चा कमेंट्स के लिए pranvallabhdas@gmail.com, स्पेलिंग PRANVALLABHDAS@gmail.com इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हरे कृष्णा.